पूरा महीना यही चर्चा, यही क्लास और यही प्रैक्टिकल की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। तो अब जनवरी का महीना आ गया, नया साल, तो मैंने सोचा कि आज हम ये डिस्कस करते हैं कि बुक्स क्यों पढ़े। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, पूरा दिसंबर महीना सबने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम ये चर्चा करेंगे जो बुक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की उसको हम क्यों पढ़े और कैसे पढ़े, यही ठीक रहेगा आज का टॉपिक। क्योंकि प्रभुपाद जी इस बात पर डिसअपॉइंट हो जाते थे कि मेरे शिष्य बहुत उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं बट मेरी किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। कभी भी कोई किसी को मिलते तो वो पूछते थे कि क्या तुम मेरी किताब का अभ्यास कर रहे हो, ये नहीं पूछते थे कि क्या तुम मेरी किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग माई बुक्स, ऐसा नहीं पूछते थे, आर यू स्टडीइंग माई बुक्स पूछते थे। रीड करना मतलब कोई कहानी जैसे पढ़ लिया उसको, स्टडी करना मतलब उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश करना, उसको अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करना। वो प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे, इसलिए बहुत सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हमेशा टोकते हैं कि ऐसा नहीं कि आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहो और फिर जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाओ तो आप बोलो कि देखो हमारे परम गुरु महाराज ने किताबें लिखी है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पढ़ना है। पढ़ना हमें भी है, डिस्ट्रीब्यूट के साथ साथ हमें उसको पढ़ना भी है। एक लकड़हारा था, नई आरी खरीदी उसने, तो बहुत जल्दी जल्दी से सारे पेड़ गिरा रहा था और बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद में और पेड़ गिर नहीं रहे हैं, तो सोच रहा है कि मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, पहले से ज़्यादा परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन पहले दिन में 15 झाड़ गिरा देता, अब 2 भी नहीं गिरते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। और फिर उसका दोस्त आके उसको समझाता है कि भाई ये जो आरी है वो अभी उसका शार्पनेस कम हो गया क्योंकि तुमने बहुत दिन से शार्प नहीं किया, जैसे हमारे किचन के चाकू थोड़े दिन के बाद शार्पनेस चली जाती है, उसको शार्प करने से तो होगा। बोले तुमको आरी शार्प करनी है, और फिर जब आरी को शार्प किया तब देखा पहले जैसे ही काम कर रहा है। तो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है, हम जब साधु संग करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, तब बहुत अच्छा से एक्साइटेडली हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे से मेहनत तो हम उतनी ही कर रहे हैं लेकिन पहले जैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, उसका मतलब कहीं हमारी आरी को फिर से शार्प करने की ज़रूरत है, मतलब फिर से प्रभुपाद जी की किताब जो है ये रेगुलर होना चाहिए प्रोसेस। क्योंकि हमारा जो प्रीचिंग है वो सिर्फ दिसंबर महीने तक का नहीं है ना, कि हम सिर्फ दिसंबर महीने में प्रीच करेंगे, दिसंबर 31 हो गया आप गीता को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम साल भर करते हैं, हम साल भर प्रचार करते हैं, हम साल भर कोशिश करते हैं कि नए लोगों को इस्कॉन के साथ जोड़े। और अगर हम ये कोशिश करना, क्योंकि प्रभुपाद जी को किसी ने बोला था कि डिफाइन इस्कॉन इन वन लाइन, तो प्रभुपाद ने बोला था चांट हरे कृष्णा स्प्रेड हरे कृष्णा, बस इतना सही बोला था प्रभुपाद, सेड इट वेरी सिंपली, इस्कॉन मतलब हरे कृष्ण जप करो, हरे कृष्ण प्रचार करो। अब हरे कृष्ण जप तो हम कर रहे हैं और जप जब हमारा ठीक होगा तब हम प्रचार कर पाएंगे, तो ये जप ठीक से करना मतलब पहले हमारी आरी शार्प होनी है, और आरी शार्प होना मतलब पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकें जब हम श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं तब हम मोटिवेट होते हैं। जब भी हम पुस्तक पढ़ते हैं उससे 4 चीज़ होती है हमारी जीवन में, एक तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, दूसरा हमारे हृदय का प्योरिफिकेशन होता है, दूसरा हमारा कन्विक्शन शास्त्र में भगवान के प्रति बढ़ता है, और लास्ट में हमें मिलता है सैटिस्फिकेशन। ये 4 चीज़ होती है जब हम किताब प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम पुनः पुनः उस किताबों को पढ़ें और हमारा मोटिवेशन ले। बिना ज्ञान के भक्ति में मोटिवेशन कैसे मिलेगा। ये तो ऐसा हुआ कि सपोज मैं आप सबको बोलती हूँ कि देखिए कमरे के अंदर में कोई बैठा हुआ है, कमरा पूरा अंधकार है, आपको सिर्फ उस पर्सन के 2 पैर दिखाई दे रहे हैं, आप प्रणाम करो और आप निकलो आगे, आप प्रणाम करो और निकलो आगे, आपके लिए अच्छा है, वो जो भी बैठे हैं महान है, ठीक है अब मैं बोल रही हूँ आप मान लोगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ कि उस कमरे के अंदर में श्रील प्रभुपाद बैठे हैं और आप प्रभुपाद जी के चरण में प्रणाम करें, तब आपका उत्साह डबल हो जाएगा। क्यों, किससे उत्साह डबल हुआ, प्रोसेस और प्रक्रिया तो वही है, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि चरण छुइए, कतार में सब बैठ खड़े रहिए और आगे चलिए, लेकिन अब जब आपका ये जो कार्य है ज्ञान से जुड़ गया, आपको ज्ञान मिल गया कि अंदर बैठे हुए पुरुष कौन है, हमारे परम गुरुदेव है, तब आपका उत्साह बढ़ गया। उसका मतलब नॉलेज से क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है, और भक्ति जीवन तो पूरा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन पे ही आधार है, हर पल हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन चाहिए ना, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं, इतनी सारी होर्डिंग्स, टीवी एडवर्टाइजमेंट, इतने सारे कर्मी लोग के साथ हम एसोसिएट करते हैं, हमें हर पल मोटिवेशन चाहिए, है ना। आप देखो कोलगेट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हमेशा क्यों करते रहते हैं एडवर्टाइजमेंट, पता नहीं है क्या, घर घर का ये कोलगेट तो सब जानते हैं। इनफैक्ट हम टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं, हम बोलते कोलगेट कहाँ है, एक आदत हो गया है कि ब्रश करने के लिए कोलगेट और ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट भी नहीं बोलते हम। फिर भी आप देखो तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज घड़ी घड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसी चीज को बार बार, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे उसको लाइक रिप्लेस कर दोगे, शायद कोई और टूथपेस्ट, वो लगा रहना चाहते हैं आपके दिमाग में, वो फ्रेश रहना चाहते हैं। तो उसी तरह से हमारी भी ये जो शास्त्र है घड़ी घड़ी से हमें पढ़ना है, पुनः पुनः हमें पढ़ना है, क्योंकि हम जानते सब कुछ है लेकिन फिर हम थोड़े दिन के बाद जैसे गैप हो जाता है हमारे श्रवण में या हमारे वांचन में हमारी साधना में, तो धीरे धीरे फिर से हम डल हो जाते हैं। बहुत बार मुझे व्हाट्सएप और ईमेल में क्वेश्चन आता है, माता जी बहुत डल लग रहा है स्पिरिचुअली तो क्या करें। मैंने एक ही चीज़ पूछा, जब भी आपको मेटीरियली डल लगता है तो आप क्या करते हो, जैसे हमारे टीवी में दिखाते हैं आपको डल लगता है तो ग्लूकॉन डी पियो, ग्लूकॉन डी मिक्स करो और एकदम शक्ति आ जाती है आपको, कितना सिंपल है एकदम। वो लोग दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट में एकदम, वो लड़का ऐसे ऐसे स्कूल से आता है फिर ग्लूकॉन डी पियो फिर एकदम शक्तिमान हो जाता है, तो उसी तरह से ये हमारा ग्लूकॉन डी है। जब हम मेटीरियल लाइफ में डल हो जाते हैं, बस ये भगवद गीता लेके बैठ जाओ, भागवतम लेके बैठ जाओ, श्रील प्रभुपाद की भागवतम परपट पढ़ो, इमीडिएटली हम एनर्जाइज हो जाएंगे। हमें इतना दुखी होकर बैठने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े ईमेल्स, मैं डिप्रेस हो गया, मेरे जप में दिल नहीं लग रहा है, अरे सिंपल है, तुम्हारा जप में दिल नहीं लग रहा है, तुम्हारा किसी चीज में दिल नहीं लग रहा है भक्ति में, मतलब तुम्हारी शक्ति जो भक्ति की है वो कम हो रही है, तो बस अब तुमको उसको शक्ति देना है। जैसे भक्ति तीर्थ महाराज बोले थे, मैंने शायद आप लोगों को बताया था, भक्ति तीर्थ महाराज ने जब अपना देह छोड़ा तो उनके पास सचिनंदन महाराज गए थे मिलने के लिए, और उन्होंने सचिनंदन महाराज को उस मोमेंट पे एक क्वेश्चन पूछा, बोला कि अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो कौन सा कुत्ता जीतेगा, और सचिनंदन महाराज शौक हो गए, बोले ये डेथ बेड में मुझे कुत्तों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, सोच के बताओ, बोलते मैं सच में बता नहीं पा रहा हूँ महाराज, दो कुत्ता जब लड़ते हैं तो उसमें से कौन जीतता है मुझे पता नहीं। फिर महाराज ने हंस के बोला कि देखो दो कुत्ते जब लड़ते हैं तो वो कुत्ता जीतेगा जिस कुत्ते को हम खाना देते हैं, जो अच्छा से खाना खाता है, जो हुष्ट पुष्ट है, वो जो दूसरा कुत्ता को हरा देगा। फिर भी महाराज समझे नहीं, फिर भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला कि हमारे सबके हृदय में दो कुत्ते हैं, एक बोलता है चलो सत्संग में चलते हैं, सत्संग में चलते हैं, एक बोलता है नहीं नहीं अभी तो ऑफिस से आया हूँ थका हुआ, जाने की जरूरत नहीं। अब ये दोनों कुत्ते जो है कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हैं, अब इसमें से कौन सा कुत्ता जी ज्यादा स्ट्रांग होगा या जीतेगा, जिसको हम रोज खाना खिलाते हैं, रोज पोषण देते हैं। रोज पोषण देना मतलब पसंद हो ना हो भागवतम पढ़ना, पसंद हो ना हो जप करना, जब हम उसको रोज पोषण देते हैं तब वो इतना हुष्ट पुष्ट हो जाता है, उसके बाद जब ये दूसरा कुत्ता उसे फाइटिंग करने के लिए आता है कि भाई नहीं चलो हमें रेस्ट लेना है, ये उसको मार फेंकता है। तो हमें पोषण देना है, रोज पोषण देना, ये एक मेडिसिन जैसा है, पसंद हो ना हो रोज भागवतम पढ़ना है। भागवत कोई साधारण पुस्तक तो नहीं है हा? भागवत का मतलब क्या है, भा मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब उसको पढ़ने से हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता है, और त मतलब तत्व ज्ञान, ये है भागवत। भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं है, भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है। भगवान जब इस दुनिया में माटी के रूप में या भूमि के रूप में आना चाहते हैं तो वो वृंदावन धाम के रूप में विस्तारित होते हैं, जब भगवान पानी के रूप में आना चाहते हैं तो वो गंगा और जमुना के रूप में आते हैं, जब भगवान पत्थर के रूप में आना चाहते हैं तो वो श्री विग्रह के रूप में आते हैं, भगवान जब समय काल के रूप में या तिथि के रूप में आना चाहते हैं तो एकादशी तिथि में आते हैं, और जब भगवान किसी व्यक्ति के रूप में आना चाहते हैं तो वो श्री गुरु के रूप में आते हैं, और जब भगवान पुस्तक के रूप में आना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम है श्री कृष्णेर अंग, भगवान का अंग है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत के जो ये 12 स्कंद है, बोला गया है कि भगवान के जो दो श्री चरण है वो श्रीमद् भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद है, और भगवान की जो जंगाए है वो श्रीमद् भागवतम का तीसरा और चौथा स्कंद है, और भगवान की जो नाभि है वो भागवतम का पांचवा स्कंद है, और भगवान का हृदय भागवतम का छठा स्कंद है, और भगवान की भुजाएं भागवतम का सातवां और आठवां स्कंद है, और भगवान का जो गला होता है वो नवमा स्कंद है, और भगवान का जो मुखारविंद है वो भागवत का दसवां स्कंद है, और ग्यारहवां स्कंद है भगवान के जो शस्त्र है, और बारहवां स्कंद जो है वो भगवान का तिलक है, जो श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान का शरीर है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम भागवतम पढ़े। और भक्तों को और एक वार्निंग भी दे दूं, भागवत जिसके घर में है और अगर वो भागवत को नहीं पढ़ता है वो भी एक अपराध है, क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि आपने आपके घर में किसी गेस्ट को बुलाया और आप उस गेस्ट से बात नहीं कर रहे, क्योंकि भागवत में और कृष्ण में तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो कृष्ण आपके घर में शेल्फ में बैठे हुए और आप बिजी है, उनसे बात नहीं कर रहे, तो ये भी एक अपराध है। तो जब हम भागवत पढ़ेंगे तभी तो हमारा कन्विक्शन भगवान के ऊपर बढ़ेगा। क्या बोलते, ज्ञान के बिना जो भक्ति है वो अंधी है, और भक्ति जो ज्ञान, और ज्ञान जो भक्ति के बिना है वो लंगड़ा है। समझ में आया, ज्ञान बिना की भक्ति अंधी है और भक्ति बिना का ज्ञान लंगड़ा है। दोनों की जरूरत है। हम सिर्फ इमोशनल, हमें भगवान बहुत पसंद है, हमें कृष्ण बहुत पसंद है, इसलिए हम भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं चलता है। पढ़ना है, अगर आपको कृष्ण पसंद है तो कृष्ण के बारे में पूरा पूरा पढ़ो ना। वहाँ हम क्यों पीछे हट जाते हैं, नहीं मुझे ऐसा कोई फिलोसॉफिकल डाउट नहीं है तो मुझे स्क्रिप्चर्स पढ़ने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बचपन से कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो कृष्ण में मानते हूँ, नहीं चलता है। जिस तरह से कोई यंगस्टर्स को अगर कोई फिल्म एक्टर या हीरो हीरोइन अच्छी लगती है तो उसके बारे में हर एक मैगजीन में पढ़ेंगे, उसको क्या खाना अच्छा लगता है, उसका ड्रेस फेवरेट कलर कौन सा है, उसका ये हर चीज़ हम पढ़ना चाहते हैं। उसी तरह से अगर हमें भगवान अच्छे लगते हैं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में हमें पढ़ना है और पढ़ना है डिटेल्स में। देखो, किसी को भी अगर पूर्णतः प्यार करना चाहते हो तो उस पर्सन के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा तभी तो उस पर आसक्ति बढ़ेगी ना। बिल्कुल कम, जो चार पांच लाइन जिसके बारे में आती है उसके ऊपर आसक्ति कैसे बढ़ेगी। मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ कि भाई मैं अगर आपको कोई पर्टिकुलर देश के बारे में सोचने के लिए बोलूँ, भाई आप जो है ब्रसल्स के बारे में सोचिए, आप सोचिए ब्रसल्स क्या सोचूँ उसके बारे में, मैंने कभी उसको देखा है ना, मुझे पता है वो मैप में किधर है, आप कैसे उसके बारे में सोचोगे। उसके बारे में सोचना है मतलब उसके बारे में आपके पास इनफ ज्ञान होना चाहिए। और भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34 श्लोक में बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु ममे वैश्य से युक्त एवं आत्मानाम मत परायणः। ये जो पूरे भगवान के, ये जो भगवत गीता के 700 श्लोक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 9th चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है 34। अगर आज ए गीता स्टूडेंट अगर आपको कोई बोले ना कि भगवत गीता को एक लाइन में, एक श्लोक में आप बता दो, आप ये श्लोका बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पूरा सारांश है। वहां पे भगवान सिंपली बता दिए, तुम मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो, मुझे याद करो, मेरे बारे में तुम सोचो, तुम मुझे प्यार, तुम पक्का मेरे पास में, आत्माना मत परायण, मेरे परायण हो जाओ, तुम मेरे पास आओगे, बस इतना। हम तो वही चाहिए ना, हम तो भगवान के पास जाना चाहते, उसके लिए मार्ग ढूंढ रहे, पूरा प्रोसेस उसके लिए ही चल रहा है। तो उसका भगवान बोल दिया कि मुझे याद करो, और तुम याद कैसे करोगे तुम अगर तुम उनके बारे में जानते ही नहीं हो। जितना उनके बारे में डिटेल जानोगे, सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं कि जो भागवतम पढ़ता है उसके जीवन में 5 चीजें होती। एक तो उसको तृष्णा, ये जो मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जो हमारी जो डिजायर है, जो एकदम वेव्स जैसे आती है, समुद्र के वेव्स जैसे, वो आपकी कम हो जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। और आपकी जो आसक्ति है, भौतिक आसक्ति है, वो कम हो जाएगी। आध्यात्मिक, भगवान के ऊपर में जो प्रीति है वो बढ़ जाएगी, और भगवान के जो भक्त है उस पे प्रीति बढ़ जाएगी, हृदय प्यूरिफाई हो जाएगा। ये सारे साइड इफेक्ट है, जैसे कोई मेडिसिन लेते तो उसके साइड इफेक्ट लिखा रहता है ना, नौसिया, वॉमिटिंग, ये सब आपको होगा बोल के हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट लिखा रहता है, वैसे ये भागवतम नाम की जो मेडिसिन है उसको लेने से ये सारे साइड इफेक्ट है। और अगर ये सारे साइड इफेक्ट हम में नहीं आ रहे, मतलब कहीं तो हमारा वांछन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वांछन सही होगा ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको अपने आप ही, आपको डिजायर्स कम हो जाएंगे, अपने आप ही आपको भक्तों पे प्रीति बढ़ जाएगी, अपने आप ही आपको भौतिक विषयों पे आसक्ति कम हो जाएगी, आपका हृदय क्लीन हो जाएगा। क्यों भक्तों पे आसक्ति बढ़ जाएगी, भक्तों पे, भक्तों के साथ एक साक्ष्य भाव आपका बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम किसी को प्यार करते तो उसकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है ना। आप सोचोगे जैसे एक माँ का प्यार है, जब अपने बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उसकी हर चीज़ बहुत प्यारी लगती है। वो बंदा स्कूल में है लेकिन वो जो घर में छोड़ के गया ना, कहीं पेंसिल भूल गया, डब्बा भूल गया, उसका बैग हो, हर चीज़ आपको प्यारी लगती है। मैं एक माँ के उससे बोल रही हूँ, क्यों आपको इतनी प्यारी लगती है उसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। उसी तरह से जब आपको भगवान से प्रीति हो जाती है, भगवान से संबंधित हर चीज प्यारी लगती है, और भगवान से संबंधित, सबसे ज्यादा संबंधित क्या है, उनके भक्त। तो इसीलिए जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, जब उनके भक्तों को भी कहीं देखते हैं तो हमें प्यार आता है, ये हमारे हैं, है तो ऐसा होता है बहुत बार, आप कोई और सिटी में जाओ, आप कोई रेलवे स्टेशन में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी आप कोई सिटी में कोई क्राउड मार्केट में हो, अगर आपको कोई दूर से भी तिलक वाला दिख जाए ना, आपको आनंद हो जाता है, जैसे कि समथिंग, बस कोई एक कुछ तो एक एक अपना पंसा, शायद आप उस इंसान को जानते नहीं कुछ नहीं, लेकिन उसने अगर तिलक और कंठे है तो आप एकदम लगता है कि मेरा है, मेरे साथ कनेक्टेड है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम सब भगवान से कनेक्टेड है, इस संप्रदाय से, इस गुरु परंपरा से कनेक्टेड है, तो आपस में हमारा ये जो एक परिवार जैसा एक फीलिंग आ गया है कि ये सब किस लिए हो रहा है। जब भागवत पढ़ते हैं तभी तो हमें लगता है ना कि हाँ ठाकुर जी के हम सब परिवार के सदस्य हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, रोज कम से कम एक एक पेज या दो पेज या एक श्लोक भगवान के बारे में जानना है, इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तभी भगवान के ऊपर प्रीति हम बढ़ा पाएंगे। प्यूरिफिकेशन, भागवतम से, भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में बोला गया है, श्रीनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहित सतम। जब ये पुण्य श्रवण कीर्तन हम जब करते हैं, भागवत जब हम सुनते हैं, हमारे हृदय में जो भी कलमश है सब कुछ बाहर चला जाएगा। कौन करेगा वो काम झाड़ू लेके? भगवान खुद करते हैं, ठाकुर जी खुद करते हैं, ठाकुर जी खुद करते हैं। ये तो सुंदरता है। आप इमेजिन करिए, सपोज आपका घर बहुत गंदा है और आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं जब गेस्ट आते हैं? पहले तो उसको कहीं छुपाओ, सोफा के नीचे, बेड के अंदर, वही एक काम, सबके घर की यही कहानी है कि भाई गेस्ट आ रहे, मतलब सबसे पहले मैं कहाँ मेरा कचरा छुपा दूँ। अब सपोज कोई गेस्ट आपके घर में आ गए, आपके आत्मीय नहीं है, कोई है पास में रहते थे, आ गए, जब वो गेस्ट आपके घर के अंदर आएंगे, देखेंगे आपका घर बहुत गंदा पड़ा है, वो कुछ नहीं बोलेंगे, आएंगे सोफा पे बैठेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप इतना चिंता मत करिए, ठीक ही है, ऐसा ही है, बैठिए। लेकिन आपके घर से बाहर जाने के बाद वो सबको इन्फॉर्म करेंगे कि इनके घर गया था, इतना गंदा था, आपके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे बोलेंगे कि इतना गंदा, भक्त हो कि इतना गंदे से रखते हैं सब, है ना। लेकिन वही अगर आपका कोई क्लोज फ्रेंड आपको मिलने के लिए आया और आपका घर बहुत गंदा पड़ा है और वो देख रहा है कि आप सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या करेगा? इमीडिएटली वो भी आपको हेल्प करने की कोशिश करेगा, चलो माता जी मैं भी हेल्प कर देती हूँ, चलो इसको यहाँ रख देते वहाँ रख देते, दोनों में डिफरेंस देखा ना। उसी तरह से जब भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और वो जब देखते हैं कि हमारा हृदय गंदा पड़ा है तो वो इमीडिएटली क्या करते हैं, अपनी स्लीव्स फोल्ड करके काम पे लग जाते हैं, चलो कहाँ है झाड़ू, कहाँ है, चलो पोछा का, चलो शुरू करते काम। और वो किसी को हमारे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, वो खुद, वो भगवान से इतना मांगते हैं कि मुझे अंदर आने तो दो, अंदर आने दो, बस। कहाँ से आएंगे भगवान? ये जो दो बड़े बड़े दरवाजे हैं हमारे, जिसका कभी दरवाजा बंद नहीं होता, आप देखो आंखों के ऊपर भी दरवाजे हैं जो रात को बंद होते हैं, लेकिन कान पे कोई दरवाजा, जानबूझ के ऐसा विधाता ने बनाया है कि भाई तुम 24 आवर्स भगवान का नाम सुनो, तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, रात को सोते सोते भी तुम सुन सकते हो। मेरे कमरे में ऐसा सिस्टम है, हम जब रात को सो जाते हैं तो पहले हम प्रभुपाद जी का जो हरे कृष्ण महामंत्र का टेप आता है उसको ऑन करके सो जाते हैं, तो वो पूरा रात चलता रहता है। तो क्या है कि क्योंकि पूरा रात कान तो बंद नहीं है ना, तो वो तो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप लोग भी ये कर सकते हैं, एक ही डिसएडवांटेज है, वो फिर दो दो महीने में वो खराब हो जाता है वो जो प्रभुपाद जी का टेप है वो थोड़ा सा 2 महीने में खराब, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप फिर और एक खरीद लो। तो मेरे पास ऐसे स्टॉक पड़ा हुआ है, मतलब 2-3 महीने में ये जब खराब होता है दूसरा, लेकिन मैं कभी ये नियम से ये तोड़ी नहीं हूँ कि रात को सोने से पहले जैसे बस डिम लाइट ऑन किया, प्रभुपाद जी का पहले हरे कृष्ण महामंत्र हम ऑन कर देते और फिर सुबह जैसे उठेंगे पहले वो स्विच उसको बंद कर देंगे, तो कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, 24 आवर्स में आप कभी मिस ही नहीं करोगे। या तो आप सेवा में रहोगे, या तो आप अपना 16 राउंड्स कंप्लीट करोगे, या तो आप क्लास दे रहे हो, या तो आप भागवत पढ़ रहे हो, या रात को सोते टाइम पे प्रभुपाद जी का टेप पढ़ो, कंप्लीट 24 आवर्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप ही कोशिश करते, कितना प्रैक्टिकल, इसमें आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगती है, सिर्फ प्लग ऑन कर देना। तो भगवान सिर्फ इतना बोले कि मुझे मौका तो दो अंदर आने के लिए, मैं एक बार अंदर आ जाऊंगा तो तुम्हें मैं बिठा दूंगा, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे अंदर आने दो। लेकिन हम किसे अंदर आने देते हैं? वो जो भौतिक गाने सिनेमा के या भौतिक बातें, वो सब हम दरवाजा खोल के अंदर आने देते हैं, और फिर वो लोग अंदर आने के बाद क्या करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, अंदर आने के बाद दूसरों को भी बताते हैं कि ये लोग का इतना गंदगी भरा हुआ है। लेकिन भगवान हमारे सुहित है, जब वो अंदर आएंगे तो पूरा पूरा साफ करके जाएंगे। और भगवान आते हैं कर्ण रंध्रेना, कर्ण रंध्रेना, ये जो कान के अंदर में हमारा जो होल है वो ही एक दरवाजा है कलयुग में, उसी से भगवान आ पाएंगे। बाप बोलोगे आंखों से भी तो हम भगवान के दिव्य मंगल रूप को हम देख पा रहे हैं, लेकिन जब तक भगवान कर्ण रंध्र से अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब सामने आप जो रूप देख रहे हो भगवान का आपको समझ में नहीं आएगा, आपको पत्थर दिखाई देगा। फिर आप जब भगवान का मूर्ति देखोगे भी आप उस आनंद से, क्योंकि आपको अभी तक समझ ही नहीं है देखने की, तो आप क्या देखोगे। जैसे मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देते रहती हूँ कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य क्लास मिस करके वृंदावन के सारे मंदिर का दर्शन करने गए, और फिर जब वो वापस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने पूछा कि हाउ वॉज योर आई एक्सरसाइज, तुम्हारी आंखों की एक्सरसाइज कैसी रही। और ये शौक हो गया कि मैं तो ठाकुर जी का दर्शन करने गया और गुरु महाराज बोल रहे आई एक्सरसाइज। फिर बोला वो तो आई एक्सरसाइज ही हुई ना, जब तुमको ज्ञान ही नहीं है भगवान को कैसे देखना है, तुम्हारे चर्मल चक्षु से तुमने देखा कैसे। ये तो ऐसा है कि हम सूर्य को देखना चाहते हैं बट वी आर ब्लाइंड, हमें तो दिखाई नहीं देता है लेकिन हम पूछ रहे कि हम चलो चलो सूर्य को देखते हैं। भाई पहले तुम्हारी आंखें ठीक करो, उसके बाद तो सूर्य को देखने के लिए तुम्हें कोई प्रयास करके घोड़ा गाड़ी में बैठ के जाना नहीं पड़ेगा, सूर्य तो यही है, तुम छत से भी देख सकते हो, नीचे तुम्हारे कमरे से भी देख सकते हो, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है, आंख से अंधे हो लेकिन कोशिश जबरदस्त कर रहे हो, इसको लेके उसको लेके, ये गाड़ी ठीक नहीं, ये पंचर हो गया, चलो सूर्य को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते, सिर्फ आंख रिपेयर कर दो, सूर्य तो सब जगह है। तो आंखों का रिपेयर होगा जब हम भागवतम पढ़ेंगे, जब हम भागवत पढ़ेंगे हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में सब प्यूरिफाई कर देंगे और सब, तब सारी चीजें सटीक दिखाई देगी। अब हमें सारी चीजें सटीक नहीं दिखाई दे रही, जो चीज जो नहीं है वो हम देख रहे हैं, जो चीज जो है वो हम नहीं देख रहे हैं, हम गलत दृष्टि से देख रहे हैं। और जब एक बार हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे भक्ति से भगवान के कृपा से, तब हर चीज हमें सटीक दिखाई देगी। कन्विक्शन बढ़ता है जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, कन्विक्शन बढ़ता है। ये दिसंबर महीने में मैंने बहुत सारे के घर में भागवतम इंस्टॉलेशन किया, तो हम किसी के घर गए थे तो भागवत इंस्टॉलेशन में हम ऐसा, हमने एक विधि बनाई है कि जिसके घर में भागवत इंस्टॉल होगा वो भागवत को थोड़ा कीर्तन करता हुआ अपने सिर पे रख के घर में प्रवेश होगा कीर्तन करते करते, और फिर उनके घर में भागवतम की स्थापना होगी। तो पिछले दिन मैं किसी के घर गई थी तो जब पूरा क्लास मैंने बताया भागवत के बारे में महिमा वगैरह, तो वो प्रभु जी आके बोल रहे थे, उनका कैटरिंग का बिजनेस है, तो बोले थे कि माता जी जब मैंने भागवत को सिर पे लिया मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप ये पवित्र बुक है, लेकिन जब आपने पूरा पूरा क्लास बताया भागवत के बारे में तब मुझे लगा अरे मैं इतना इंपॉर्टेंट बुक को मेरे सिर पे लेके आया था क्या, एकदम एक इतना हैप्पी फील हो गया उसको, इतना उसको रेस्पेक्ट आ गया। तो जब तक ज्ञान नहीं था तभी भी किया उस रिचुअल को, लेकिन उतना समझ में नहीं आया, लेकिन जब पूरा पूरा क्लास सुना कि हाँ श्रीमद् भागवतम में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, उसका मतलब मैं मेरे घर में साक्षात इतने सारे देवताओं लोग को मैं लेके प्रवेश किया। तो क्या हुआ ये ज्ञान से, ज्ञान से कन्विक्शन हमारा बढ़ता है, ज्ञान से हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है, प्यूरिफिकेशन होता है, हमें सही इन्फॉर्मेशन मिलता है, ज्ञान से ही हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है जब हमें समझ में आता है भगवान कितने ग्रेट है। और रूप गोस्वामी पद्यावली नंबर 41 वर्स में बोलते हैं कि ये कलयुग इतना प्रॉब्लमेटिक है, सब लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं लेकिन एक ही पर्सन है जो सफ़र नहीं कर रहा है, जो भगवान कृष्ण की गुणगान कर रहा है, जो भगवान के बारे में सुन रहा है। अहो अहो भी नकलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे, दिने दिने चंदन चंद्र शीतले यशो यशोदा तनयस्य गीयते। बोलते अहो अहो भीर, हाँ अहो अहो भीर नकलेर विदूयते, ये जो कली का प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, किसके ऊपर नहीं पड़ेगा, सुधा सुधारा का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट उसको ऐसा लगेगा जैसे उसके ऊपर में अमृत गिर रहा है, मधुरम पदे 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 उसको लगेगा जैसे कि वो हनी पी रहा है। हाँ, और फिर नीचे लिखा है कि दिने दिने चंदन चंद्र शीतले, उसको रोज रोज इतना ऐसे लग रहा है जैसे कि पीछे एसी लगा के घूम रहा है, हालांकि सबको समर का हीट लग रहा है लेकिन इसको मजा आ रहा है, इसको ऐसे लग रहा है जैसे कि उसके शरीर पे चंदन कम कर्पूर अग्रु सब डाल दिया है, उतना अच्छा लग रहा है उसको। क्यों ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, कलयुग का प्रभाव इसके ऊपर क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि यशो यशोदा तनयस्य गीयते, क्योंकि वो यशोदा के तनयस्य मतलब यशोदा के बेटे के बारे में सुन रहा है, बस इसलिए उसको कलयुग का सन नहीं छू रहा है। कितने सुंदर बात रूप गोस्वामी ने बताई, यशोदा का तन, यशोदा के बेटे के बारे में जो सुनेगा उसको कलयुग का जो ये सूर्य है उसका ये जो ताप, हम जो कलयुग के दुख में हम जो तड़प रहे, ये सारे दुख से मुक्त हो जाएगा। तो ये है प्रोसेस, भागवतम पढ़ने से हमारे जीवन में एक प्यूरिफिकेशन, सैटिस्फिकेशन, एक आनंद। ये भागवत की सारी कहानियाँ, ये स्पेशली इस्कॉन के डिवोटी सब बाई हार्ट, क्योंकि रोज ही सुनते हैं। दामोदर महीना तो और भी, अब देखो 30 डेज वही चलेगा, नेट में आप जाओ, मायापुर टीवी में जाओ, हर जगह वही कहानी। लेकिन कोई भी इस्कॉन डिवोटी मैंने देखा नहीं कि अरे बंद करो भाई बहुत बार सुना, नहीं, फिर से बैठ जाएंगे जैसे कि पहली बार सुन रहे। अच्छा, फिर यशोदा ने बांधा, ओके, उसके बाद जैसे कि सुना ही नहीं था कभी, उतना आनंद से सुनते भक्त लोग, एकदम फेस में इतना लाइटिंग आ जाता है कि हम सुन रहे अभी अभी, हमको पता है स्टोरी, अब वो बांधने वाली है, उसके बाद ये होने वाला है, फिर भी हमें आनंद आता है। यही है, ये पूरा पूरा भौतिक आनंद में और आध्यात्मिक आनंद में यही डिफरेंस है। भौतिक आनंद आपको सेटिस्फिकेशन नहीं देता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद आपको मतलब उससे सेटिएशन हो जाता है कि मुझे और नहीं चाहिए। जैसे कोई 10-15 गुलाब जामुन खा ले, सेटिस्फिकेशन तो नहीं मिला क्योंकि हमारी जीभ को कभी भी, लेकिन और खा नहीं सकते, बस हो गया। लेकिन आध्यात्मिक आनंद में आपको सेटिस्फिकेशन मिलता है, आप थोड़ा बहुत भी एक माला भी करते हो तो आपको आनंद आता है, लेकिन सेटिएशन कभी नहीं होता है कि मुझे और नहीं करना है, मुझे और नहीं सुनना है इस कथा, मैं और नहीं जाना चाहता प्रोग्राम में, ऐसा कभी नहीं होता है। हर एक दिन एक अलग ही आनंद, हर एक कथा का एक अलग ही आनंद, हर एक सिचुएशन में हम भगवान की भक्ति में आनंद लेते हैं, यही डिफरेंस है। लेकिन पुनः पुनः सुनना है, ये कोई ऐसी कथा नहीं है कि एक बार सुन लिया तो बस खत्म हो गया, पुनः पुनः उसको हमें बार बार हमें उसको सुनना है। और जैसे जैसे भक्ति में मैच्योरिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे भागवत का वही श्लोक जो आपने 5 साल पहले पढ़ा था, अब समथिंग डिफरेंट ही लगेगा, उसका मीनिंग भी डिफरेंट, बिकॉज आप, हम भी तो भक्ति जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, मैच्योरिटी बढ़ रही है, तो उसका कुछ और अलग ही मीनिंग आएगा, हम जीवन में उसको ठीक से अप्लाई कर पाएंगे। और पुनः पुनः नहीं पढ़ने से कभी भी हम वेवर हो सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो खुद भागवत परीक्षित महाराज को बताए हैं, लेकिन वो खुद क्या हो गए थे जब उनका जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी जब इस धरती में जन्म लिए तब क्या हुआ, वो तो निराकार ब्रह्म को फॉलो करने लगे थे। आपको पता है कि नहीं पता, ये कहानी कितने लोगों को पता नहीं है। ये जब राधा रानी का एक फेवरेट पैरट है, राधा रानी हमेशा अपने राइट हैंड में रखती है वो पैरट को, और हर हमें पैरट को क्या, अब तोता ही बोलते हैं ना, तोते को अपने राइट हैंड में रखती है और हमेशा उस तोते को बोलती है कि कृष्ण बोलो, तो तोता जैसे बोलेगा कृष्णा, तो राधा रानी क्या करती है, प्रोमोगेनेट की सीड्स होते हैं ना, क्या बोलते हैं, दाना, हाँ वो दाना खिलाती है उसको, और बहुत आनंद करती है, जितने बार उसको बोले कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलने से फिर उसको दाना खिलाएगी, बहुत प्यार करते थे राधा रानी। और जब राधा रानी और कृष्ण अपने निज धाम चले गए, तो ये तोता बोलता है मैं भी आऊंगा आपके साथ, तो राधा रानी बोले नहीं नहीं तुम जो है जब तक भगवान का नाम और कथा इस दुनिया में है तुम तब तक यहीं रहना है। तो ये तोता बोलता है कि लेकिन मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा, तो राधा रानी ने बोला कि जहाँ जहाँ कथा होता है भगवान का तुम वहाँ जाओ कथा सुनो। तो अब ये जो राधा रानी का तोता था वो घूम रहा था कि कहाँ कृष्ण का कथा चल रहा है, तो देखा कि कैलाश के ऊपर में कृष्ण का कथा चल रही थी, वहाँ पे पार्वती देवी क्वेश्चंस पूछ रही है और शिवजी जो है वो जवाब दे रहे हैं, भागवत कथा सुना रहे हैं। तो तोता जाके वहाँ पे बैठ गया और पूरा भागवत सुन रहा है। अब बीच में जो है पार्वती देवी सो गई, पार्वती देवी के बारे में सब बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, पार्वती देवी सो गई, पार्वती को ऐसे क्वेश्चंस आ गए, पार्वती, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो पार्वती जी जो है वो भक्ति जीवन में हेल्प करती है। आप अगर शिव भगवान के शिव जी के जीवन में अगर आप देखो, शिव जी क्या करते थे, पूरा टाइम भगवान का ध्यान करते थे, और जब ध्यान से बाहर निकलते थे, पार्वती जी से बात करते थे, तब पार्वती जी क्या करती थी, उन्हें कोई भी एक आध्यात्मिक प्रश्न पूछ लेती थी, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, और फिर अगेन शिवजी उसको जवाब देते देते उनका टाइम हो जाता था, फिर उनका टाइम आता था, फिर से ध्यान करने बैठ जाते थे। तो एज ए वाइफ शी वॉज मेकिंग श्योर, एक पत्नी की तरह वो क्या हेल्प कर रही थी, शी वॉज मेकिंग श्योर दैट हर हस्बैंड इज ऑलवेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, या तो वो ध्यान में है या तो वो कथा कर रहे हैं, और कोई चॉइस नहीं है उनको। और ये जो रहता है कि वो सो गई, ये सब पूरी एक लीला होती है, अदरवाइज शी इज अ वेरी वेरी ग्रेट डिवोटी। तो पार्वती देवी जब सो गई तो इस तोता को टेंशन हो गया कि भाई अगर पार्वती जी सो गई है तो ये कथा बंद हो जाएगी। तो वो क्या किया, अब तोते लोग तो बहुत फेमस है इमिटेट करने में, तो वो पार्वती देवी का साउंड इमिटेट करने लगा। हाँ हाँ, तो बीच बीच में शंकर जी पूछ रहे हैं, शिव जी पूछ रहे कि सुन रही हो ना, हाँ हाँ, तो तोता एकदम पार्वती देवी के वॉइस में हाँ हाँ करने लगा। जब पूरा 12 कंड खत्म हो गए तब शिव जी ने आँख खोला, देखा पार्वती तो सो रही है। बोले ये सो रही है तो फिर वो हाँ हाँ कौन कर रहा था? तब देखा कि अरे ये तो डाल पे तोता बैठा है जो कब से हाँ हाँ कर रहा है। अरे शिव जी को गुस्सा आया, कौन है ये अधिकारी है कि नहीं भागवत सुनने का? क्योंकि जो भागवत सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं, जो भागवत सुनते हैं वो अमर हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे माता जी, हम भी रेडी है सुनने के लिए, अमर हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं मैं उसको प्रैक्टिकल प्रूफ आपको बताऊंगी। बोलते हैं कि जितना देर आप भागवत कथा सुनते हो, अभी हम सब भागवत कथा सुन रहे हैं, अभी आप सांस ले रहे हैं ना, ये सब आपके लाइफ स्पैन में कैलकुलेट नहीं होता है। समझ में आया? मतलब सपोज आपका जीवन काल है 50 ईयर्स, आपको जीना है तो 50 ईयर्स में कितनी बार आप सांस लेते हो वो सांस ही यमराज जो है कैलकुलेट करता है। तो जब आपका ये सपोज आपका 2 लाख 15 लाख जो भी करोड़ सांसें जो होगी वो जब आपकी हो जाती है तब आपको आपका शरीर छोड़ना है। लेकिन जब आप भागवत कथा सुनते हो, आप जितना बार अभी सांस लिया वो सब फ्री सांस है, फ्री कॉम्प्लीमेंट्री है, एक काउंट नहीं होगा आपके आपके जो इसमें काउंट नहीं होगा। तो आप इमेजिन करिए, अगर आपको अमर बनना है तो कंटिन्यूसली सुनिए। अगर आप भागवत क्लास में कंटिन्यूसली है तो यमराज आके आपको टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि यमराज खुद भी बैठे हैं, देखो पीछे। नहीं मैं जोक नहीं कर रही हूँ, जहाँ जहाँ भागवत चलता है यमराज खुद आके बैठते हैं, वो खुद सुनते हैं और वो खुद देखते हैं कि अच्छा अच्छा ये भी भागवत में बैठा था, अच्छा अच्छा ये भी बैठा था, सबको एकदम नेम्स के साथ उनका फेसेस भी एकदम फोन में स्नैप खींच लेते हैं। और जो सो रहा है उसके तो गया काम से, उसका तो गया काम एकदम, उसका एकदम व्हाट्सएप सीधा पहुंच जाता है ऊपर में कि नोट डाउन दिस पर्सन इज स्लीपिंग। ये सच, मैं सच बता रही हूँ, जितना बार आप सांस लेंगे ये सब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री सांस है, सो वी कैन एंजॉय। इसलिए क्लास अगर 2 घंटा 3 घंटा आपको तो ये फ्री है, आपका कैलकुलेशन में है ही नहीं ये सांस। तो अच्छा हम तोता के बारे में बात कर रहे थे, तो ये तोता तो हाँ हाँ कर रहा है और शिव जी को ये डर लगा कि जो अधिकारी नहीं है उसको भागवत मिल गया, वो तो चिरंजीवी बन जाएगा, अमर बन जाएगा, ये कौन है ये तोता? तो उस तोते के पीछे भागने लगे, ये तोता तो राधा रानी का तोता है, ये तोता सोचे मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो उसको तो वहीं अट्रैक्ट होता है जहाँ भगवान का कथा चलता है। तो उसने देखा कि बद्रिका आश्रम में कथा चल रही है, व्यासदेव अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं, व्यासदेव की पत्नी का नाम है बीतिका, वो कथा सुन रही है और व्यासदेव सुना रहे हैं। यहाँ भी सेम केस, व्यासदेव सुना रहे, बीतिका सो रही है। और सोते सोते क्या है, अब जैसे अभी जब नींद आती है आपको क्या होता है, आप एकदम यौन करना शुरू कर देते हो। तो वो एकदम जब यौन करने लगी, उसने अपना मुंह थोड़ा सा बड़ा किया तो ये तोता जाके उसके मुंह के अंदर चला गया, पेट में जाके बैठ गया। अब सोचा ये तो बहुत सेफ प्लेस है, मुझे यहाँ से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब शिव जी ढूंढ रहे कि तोता गया कहाँ गया कहाँ, तब उसको जाके समझ में आया कि ये तो बीतिका के पेट में चला गया। तो वो जब गुस्सा हो रहे थे तब व्यासदेव ने बोला कि देखो ऐसे भी वो तुम्हारी कथा सुन चुका है और जो कथा सुनते हैं उनका तो मरण होता नहीं, तो अब तुम छोड़ दो यहाँ पे, तुम शांत हो जाओ और कैलाश वापस चले जाओ। तो फिर शिव जी जो है शांत होके वापस चले गए। अब ये जो बीतिका के शरीर में जो तोता ने प्रवेश किया वो उनके बेटे के रूप में, मतलब सुखदेव गोस्वामी के रूप में जो है वो परिवर्तन हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी के रूप में वो अंदर बैठे तो उन्हें बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि रोज आनंद ही है, व्यासदेव जो पिताजी है वो भागवत क्लास कर रहे हैं और उसको तो भागवत ही सुनना था, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो 16 साल तक अंदर रह गए, तो मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर आऊँगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, सब अंदर सब भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान को देखते हैं, हर एक जीव, सुखदेव गोस्वामी की बात नहीं, हर एक जीव भगवान को अंदर में, जब हम शिशु रूप में माता के गर्भ में होते हैं तब वहाँ हम ठाकुर जी से बात करते हैं, बहुत सारी प्रोमिसेस करते हैं कि हम इस बार ये जो हम सफ़र कर रहे हैं ठाकुर जी, ये जो हम 9 महीने गर्भ में अंधकार में जहाँ पे मल मूत्र सब पड़ा हुआ है, छोटे छोटे वॉर्म्स हमें काटते हैं, हम इतनी घबराहट में रहते हैं, हम वहाँ पे भगवान को प्रॉमिस करते हैं कि इस बार जब मैं बाहर आया मैं और कभी किसी माता के गर्भ में नहीं जाऊँगा ठाकुर जी, मेरा ये लास्ट, मुझे आप एक बार चांस दे दो। और हम इतना दृढ़ निश्चय करके, और इसीलिए जब हम बाहर आते हैं तब क्यों बच्चा रोता है, क्योंकि वो माया जगत से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग सब आनंद करते हैं उसको देख के, लेकिन उसको अपने भगवान के ऊपर में वो फोकस रहता है। इसलिए आप देखो बच्चे सोते रहते हैं सब समय, जन्म हुए बच्चे ये सब समय भगवान के ध्यान में रहते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे माया का प्रभाव जब उस पर शुरू हो जाता है फिर धीरे धीरे वो भूल जाते हैं। बहुत सुंदर एक भजन मुझे याद आ रहा है, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पाए नाना विधा व्यथा, तुम्हार शरणे आसिया जियामी, बोली बो दुखेर कोथा। बहुत सुंदर एक आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर का है ये भजन। तो भूलिया तुम्हारे संसार आसिया, मैं गलती से मतलब ये जो है ये माया के जाल में पड़ के आपके संसार में मैं आ गया। और उसके बाद धीरे धीरे वो पूरा गाना आगे चलता है कि कैसे मैं जब जन्म लिया तब मुझे सब याद था, मैं सोचा था मैं करूँगा, लेकिन ये स्वजन लोगों का फेस देख के मैं धीरे धीरे सब भूल गया। फिर बाल्य जीवन मेरा क्रीड़ा में चला गया, फिर पढ़ाई में चला गया, फिर शादी हो गई, फिर बच्चे, काम धाम, बूढ़ा हो गया, ऐसे ही मेरा पूरा जीवन चला गया। अब मैं जाके किसको बोलूं मेरे दुख की बात कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं क्या सोच के आया था, मैं क्या कर लिया, मेरे पूरा जीवन को मैंने ऐसे वृद्धा मैंने कर लिया। तो ये सुखदेव गोस्वामी इसलिए बाहर नहीं आना चाह रहे थे कि माया का प्रभाव। तो फिर व्यासदेव द्वारका जाके कृष्ण को रिक्वेस्ट करके कृष्ण को लेके आए, बोलते हैं वो नहीं आएगा बाहर जब तक कि तुम प्रॉमिस ना दो, भगवान जब प्रॉमिस ना दे। तो फिर भगवान गर्भ में सुखदेव गोस्वामी के साथ जो वो आते हैं और बात करते हैं कि भाई गर्भ के अंदर प्रवेश नहीं करते, वो बाहर ही खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि ए शिशु तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम जब बाहर आओगे माया को मैं रोक दूंगा, उस एक मिनट के लिए एकदम माया का प्रभाव सब जगह से उठा दूंगा तुम्हारा जो है, क्योंकि माया इमीडिएटली अटैक करती है द मोमेंट यू कम आउट। और फिर वो जो है माने, लेकिन जब वो बाहर निकले, ऐसा नहीं कि वो शिशु रूप में निकले, वो सब तो ग्रेट सेंटली पीपल है, वो जैसे बाहर निकले 16 साल के लड़के बन गए। और फिर उन्होंने क्या किया, ना अपनी माँ की तरफ देखा, ना अपने पिताजी की तरफ देखा, और भागे जंगल की ओर, कोई वस्त्र नहीं, कुछ नहीं, एकदम नग्न। और व्यासदेव उसके पीछे पीछे भाग रहे, बेटा क्या कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, व्यासदेव भाग रहे उसके पीछे। व्यासदेव बहुत ज्यादा शोक में कि मैं सोचा मेरा बेटा जो आएगा मैं उसको भागवत पढ़ाऊंगा, वो आगे चल के भागवत का प्रचार करेगा, और ये तो भाग रहा है। और इसको ये बोलता मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधा एकदम जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ के जो है निराकार ब्रह्म के ऊपर में मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। अब व्यासदेव को तो बहुत दुख लगा कि अरे मेरा बेटा तो भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में प्रचार करेगा, ये निराकार ब्रह्म। फिर व्यासदेव ने क्या किया, अपने जो दूसरे दो तीन शिष्य थे उनको एक प्लान ऑफ एक्शन बोला, बोला तुम जाओ ऐसे ऐसे करो उधर जाके। तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग सब लकड़ाहार के रूप में आए, जैसे कि कोई लकड़ाहार हो तो ऐसे सब बांध बांध के वो जंगल में चले गए, और फिर वहां जाके लकड़ियां काटने लगे जहां पे वो सुखदेव गोस्वामी जो है मेडिटेशन कर रहे। और जब वो ऐसे लकड़ियां काट रहे थे तो लकड़ियां काटते काटते वो गा रहे थे गाना। वो क्या गाना गा रहे थे, भागवत के दो श्लोक, दो ही दो श्लोक उन्होंने गाए। पता है आपको ये दो श्लोक क्या है, बहुत सुंदर श्लोक। पहला श्लोक वो गाते हैं, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णये कर्णीकरम, बिव्रीहात वसन कनक कपीसं वैजयंती च मालम, रंध्रान वेणुरधर सुधयो पूर्णये गोपवृंदे, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशात गीत कीर्ति। भगवान के रूप के बारे में, बरहा पीड़म नटवर वपु, भगवान का जो रूप होता है यहाँ थोड़ा सा ऊंचा है, किरीट है, पीकॉक का फेदर है, नटवर वपु देखने से एकदम लगता जैसे कि एकदम एक्सपर्ट डांसर है। नटवर वपु कर्णये कर्णीकरम, उनके जो ये कान है उस पे ब्लू कलर का फ्लावर लगाया हुआ है, कर्णये रंध्रान वेणुर अधर सुधयो, हाथ में वेणु है, गले में वैजयंती माला है, पीताम्बरी येलो कलर के कपड़े पहने हुए है, और ये जो वेणु है उसमें अपने अधर सुधयो अपने होठ उस वेणु पे लगाए हुए है, और होठों के माध्यम से वेणु के अंदर में अमृत का प्रवाह जा रहा है, और आस पास में सारे गोप बालक भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ऐसे भगवान जो शोभा देते हुए इतने सुंदर वृंदावन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ भगवान ने पैर रखे हैं सब जगह भगवान के पैरों पे जो निशान होते हैं ना, भगवान का शंख चक्र, वो सारे ऐसे वृंदावन की भूमि में सब जगह स्वपद रमनम हुआ है, इतना सुंदर जो है भगवान का रूप है। तो ये जो अभी मेडिटेशन करते करते उन्होंने आँख खोल दिया, कौन है इतना सुंदर, इतना सुंदर कौन है, और फिर उसकी सुंदरता के बारे में तो बता दिया, फिर उसके स्वभाव के बारे में बताते हैं। फिर दूसरा लकड़हारा बोलता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिग्गम सियायादपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रि उचितम ततो न्या किं वा दयालु शरणम व्रजे मा। बोलते कि ये जो भगवान है इतने सुंदर, वे देखने में ही सुंदर नहीं है, उनका स्वभाव भी बहुत सुंदर है। अहो बकीयम, जो बकासुर की बहन है बकी, वो अपने स्तन पे विष लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु है, उसको धात्री, हमारी जो सात माएँ होती है, सेवन मदर्स में से एक मदर है नर्स, तो उनको धात्री का पोजीशन दे दिया गोलोक वृंदावन में। जो मारने आई थी, अगर उसको ही भगवान इतना कुछ दे देंगे तो सच में जो भगवान की भक्ति करते उसको कितना देंगे ऐसा। और किम वा दयालु, क्या इस पूरी दुनिया में इनसे भी ज़्यादा दयालु कोई हो सकता है क्या? और हम इतने दयालु पर्सन को छोड़ के किसी और का शरण क्यों ले भला, ये वो लोग बोल रहे हैं अपने श्लोक में। और जब सुखदेव गोस्वामी ये बात सुनते हैं, वो एकदम गदगद हो जाते हैं, कितना सुंदर भगवान का स्वभाव है। क्या हम ये काम हम कर सकते हैं कि कोई हमें मारने तो छोड़ो, कोई थोड़ा सा मुंह बिगाड़े तो भी 10 दिन हम बात नहीं करेंगे कि हमको हरे कृष्णा नहीं बोला, हमारे तरफ देखा नहीं। और ये तो भगवान को मारने से आए तो भी भगवान ने बोला तुम दूध पिलाने आई हो ना, तुम माँ हो, माँ का स्थान तुमको दे दिया। तो बोला ऐसे भगवान की शरण हमें लेना चाहिए। और सुखदेव गोस्वामी जाके वो दोनों लकड़ाहार के पैर छूने लगे, बोला कहाँ से ये बोला, किसके बारे में बोल रहे हो, कौन है तुम्हारे गुरु, मुझे ले जाओ, मैं इतना सुंदर कभी मेरे जीवन मैंने सुना ही नहीं इतना सुंदर चीज। तो फिर वो लोग बोले कि ये तो सिर्फ दो है, दो श्लोक है, हमारे पास ऐसे 18,000 है, आपको सुनना है? हाँ सुनना है, कहाँ है आपके गुरु, आइए मैं ले जाता हूँ हमारे गुरु के पास। और तब वो ले जाते हैं अपने गुरु जी के पास, और तब वो शौक, ये तो मेरे पिताजी है। तो फिर व्यासदेव एकदम खुश, बोलता बैठो मैं तुमको पूरे 18,000 सुनाता हूँ, ऐसे तो बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। और फिर व्यासदेव जो है पूरा ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को देते हैं, और उसके बाद से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे एग्जाल्टेड जो व्यासदेव के बेटे हैं, उन्हें भी पुनः पुनः सुनना पड़ेगा, नहीं तो कैसे वेवर हो जा रहे हैं ना। तो हम हमारी तो क्या कही, अगर हम नहीं सुनते हैं, भागवत एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एवरी डे वी मस्ट हियर भागवतम कंप्लीट। श्रीमद् भागवतम के 12वें खंड में बोला गया है कि जो वैष्णव है उसको भागवत प्रिय है। अगर हम वैष्णव है तो हमें भागवत प्रिय होना चाहिए, हमें भागवत पे आसक्ति होनी चाहिए। बिना भागवत के हम नहीं, एक दिन भी पढ़े बिना हम नहीं रह सकते, वैष्णव का गुण ये है। और रूप गोस्वामी ने जो 64 लिम्स दिए हैं भक्ति का, 64 लिम्स में बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से भी उन्होंने 5 इम्पॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं कि भाई तुम सारे ना भी पालन कर पाओ, ये 5 तुम करो, साधु संग, मथुरावास, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण एंड श्री विग्रह सेवा। ये 5 चीज एज डिवोटीज हमें ये चेक कर, बस ये 5 चीज हमें करना है। नाम कीर्तन हम जब कर रहे हैं, भागवत श्रवण रोज भागवतम सुनना है या तो पढ़ना है, और है नाम कीर्तन, साधु संग, इस्कॉन में साधु संग तो बहुत ईजी से हमें मिल जाता है, हमेशा हम वैष्णव के उसमें रहते हैं, श्री विग्रह सेवा, सबको अपना तरीके से जो है विग्रह की सेवा करनी चाहिए, घर में छोटा विग्रह रख सकते हैं या आपके आसपास में मंदिर में जाके भी आप विग्रह की सेवा कर सकते हैं, एंड मथुरावास। मथुरावास क्या करें माता जी, सब विशाखापट्टनम से चलिए मथुरा, ट्रेन पकड़ते हैं, नहीं नहीं उतना चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान ने तो बोला है कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम कीर्तन करते मैं तो वहीं रहता हूँ, ना हम तिष्ठानी वैकुंठा योगिना हृदय, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठानी नारदा। तो ये तो हो गया मथुरा, या राधा दामोदर है मतलब ये वृंदावन है, मंदिर में तो जगन्नाथ जी भी है और राधा दामोदर भी है, मतलब पूरी भी है और वृंदावन भी है, और सीताराम लक्ष्मण हनुमान है तो अयोध्या भी है। तो हमको तो अब तो मथुरावास बोल रहे हैं, हम तो 3 in 1 में हम लोग वास कर पा रहे हैं, बस यही है मथुरावास। तो ये 5 चीज बस एज भक्त हम कर रहे हैं कि नहीं हमें देखना है। सो उसमें इम्पोर्टेंट दिया हुआ है भागवत श्रवण रोज, ये इसलिए हम लोग गाते हैं ना नित्यम भागवत सेवाया, नित्यम भागवत का सेवा करना, नित्यम भागवत का सेवा करना, सुनना है भागवत, भागवत की सेवा उसी तरह से करना है। भागवत की सेवा मतलब को आरती दे के छोड़ देना नहीं है, नहीं बहुत सारे ऐसे भी है, हम देखते कुछ राजस्थानी मारवाड़ी लोग जो है भागवत को मानते हैं, लाल कपड़े के अंदर में ढक के पूजा रूम में रखते हैं, रोज भागवत को आरती देते हैं, अच्छी बात है। बट द रियल वे फॉर सर्विंग भागवतम इज टू ओपन द भागवतम एंड रीड। भगवान की हर चीज का एक विशेष वे ऑफ एंजॉइंग है। जैसे अगर भगवान का प्रसाद है तो हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान के प्रसाद को मेरे दांतों से कैसे कुचल दूं, इसलिए मैं सिर्फ उसकी पूजा करूंगा। नहीं, उसको दांतों से ही सेवा कर सकते हैं, उसकी हमें लेना है। वैसे भागवत में पूजा करूं, नहीं, भागवत को पढ़ के ही पूजा करना है ना, विग्रह को सेवा करके पूजा। ऐसा सबका अपना अपना द वे कृष्ण मैनिफेस्ट, उसका डिफरेंट डिफरेंट वे है। तो भागवत इसीलिए तो देखिए हमारे पूर्वज लोग भी सबके घर में रेगुलरली सब गाँव में ये भागवत सप्ताह होती थी। अभी ज़्यादा करके नहीं हो रही है, अब कुछ कुछ अमीर लोग जो है अपने तरफ से कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों को बुलाते हैं, लेकिन पहले तो हर गांव में ये भागवत सप्ताह, 7 दिन का भागवत सप्ताह होती थी। और भागवत का एक चीज़ ये भी है कि अपार्ट फ्रॉम रीडिंग हमें सुनना भी चाहिए, क्योंकि भागवत हम सिर्फ भक्तों के मुँह से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, अपने आप से अध्ययन करने से पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए तो ये भागवत सप्ताह, जो ये भागवत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे हम किसी वैष्णव से भागवत सुने, तो ये फैसिलिटी तो अभी है हमारे पास, यूट्यूब है हमारे पास, स्मार्टफोन्स है, तो हमें पढ़ना भी है और हमें उसको सुनना भी है, कान से हमारे अंदर में जो है वो शब्द प्रवेश होते हैं। ये भागवत को सबसे पहले ठाकुर जी ने ब्रह्म को दिया था, ब्रह्म को बोला नहीं था, लेकिन उनके पास उन्होंने ये जो भागवत के जो सारे श्लोक है वो ब्रह्मा के हृदय में उसको ये किया था, मतलब ओपन किया था या मैनिफेस्ट किया था ब्रह्मा के हृदय में। लेकिन ब्रह्मा के हृदय में ये 18,000 नहीं थे ये श्लोक, सिर्फ 4 श्लोक थे। इसलिए हम ये जो चतुश्लोकी भागवतम के जो 4 सेकंड कैंटो के भागवतम के जो 4 इंपॉर्टेंट श्लोक है वो ब्रह्मा को दिए थे। फिर वो 4 का, क्योंकि ब्रह्मा तो बहुत इंटेलिजेंट है तो उनको 4 श्लोक में पूरा भागवत समझ में आ गया। लेकिन ये धीरे 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 अब वो 4 का परपोट दिया, फिर उसको और विस्तार में समझाते समझाते हम तक जब आ रहा है अभी 18,000 हो गया। नहीं तो पहले तो शॉर्ट भागवत उतना में वो लोग समझ जाते थे। शंकरशन बलराम जी ने भी ये भागवत सुनाई थी चतुष कुमार को। ये चतुष कुमार में जो सनत कुमार थे उन्होंने फिर इसका जो है प्रचार करना शुरू किया था, तो उन्होंने सांख्यायन मुनि को ये भागवत बताई थी, फिर सांख्यायन मुनि ने बृहस्पति को और पराशर मुनि को समझाया था भागवत, और फिर पराशर मुनि ने ये भागवत को समझाया मैत्रेय को, फिर मैत्रेय ने समझाया था विदुर को। इसलिए हम लोग मैत्रेय एंड विदुर का कॉन्वर्जेशन देखते हैं श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में आता है। तो इस तरह से जो है शिव पार्वती को बोल रहे हैं ऐसा अलग अलग स्थानों पर, इसमें पराशर मुनि का एक विशेष स्थान है क्योंकि पराशर मुनि को आशीर्वाद मिला है। पराशर मुनि के जो पिताजी थे उनका, उनको किसी राक्षस ने या किसी दानव ने मार दिया था, किसी राक्षस ने मार दिया था, तो गुस्सा आके उन्होंने इतना बड़ा एक यज्ञ का आयोजन किया जिसकी पूर्ति होने से जो सारे राक्षस है सबका नाश होगा। तो जो पुलत्स्य मुनि है जो राक्षसों के पिता है उन्होंने वशिष्ठ मुनि को रिक्वेस्ट किया कि काइंडली इसको बोलो ये यज्ञ बंद करने के लिए, अब जो हो गया माफ़ करने के लिए बोलो। तो फिर वशिष्ठ मुनि जाके जो है इनको रिक्वेस्ट करते हैं पराशर मुनि को, और पराशर मुनि मान जाते हैं और यज्ञ बंद कर देते हैं। तो तब पुलत्स्य मुनि बहुत ज़्यादा खुश होके कि तुमने मेरे बात का मान रखा है तो मैं तुमको ये ब्लेसिंग देता हूँ कि तुम्हारे जैसा भागवत वक्ता कोई नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ, तुम इतनी सुंदर तरीके से भागवत सबको समझा पाओगे। तो पराशर मुनि वॉज अ वेरी ग्रेट मतलब ओरेटर, या जो है बहुत अच्छा से भागवत का वो समझाते थे। तो ये भागवत का बहुत बहुत बड़ी महिमा है। आप लोग ने गोकर्ण की कथा सुनी है, आपका चित्रकूट में नारद मुनि को जो है शांडिल्य मुनि ये गोकर्ण के, और ये जो दुंडुकारी ये जो आत्माराम ब्राह्मण है उसकी कहानी सुनाते हैं। ये आत्माराम नाम का जो एक ब्राह्मण है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे रहता था, बहुत अच्छा सीधा साधा था, अच्छा से भजन कीर्तन करता था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी धुंधुली वो अच्छे स्वभाव की नहीं थी, तो प्राय उसे तंग करती थी और बात नहीं मानती थी, बहुत ज़्यादा नकचड़ी थी। लेकिन आत्माराम का स्वभाव बहुत अच्छा था तो दोनों कैसे भी करके वो एडजस्ट करके रहते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनका बेटा नहीं था, तो वो हमेशा सोचते थे कि अगर बेटा हो जाए। तो एक दिन जो है आत्माराम बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया सोच सोच के कि अब मेरे धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा बेटा नहीं है, तो मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी श्राद्ध सेरेमनी कौन करेगा। और सब शास्त्र में अब भागवत में ज्यादातर कहानी में आप सुनते हो कि सब बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि बेटे को संस्कृत में बोलते हैं पुत्र, और पुत्र का काम ये होता है कि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, नरक जो बोलते हैं स्वर्ग और नरक होता है, तो बहुत सारे जो नरक नरक पे प्लैनेट्स हैं वो बहुत सारे प्लैनेट्स मिलके एक ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स है जिसको बोला जाता है पुम पुम। तो ये जो पुम प्लैनेट्स में अगर आप गलती से अगर आपने बहुत पाप किया है और आप उस प्लैनेट में चले गए हैं तो वहाँ से आपको निकाल सकता है सिर्फ बेटा। तो ये जो पुम नामक नरक ग्रहों में से जो आपको निकाल सकता है, मतलब त्र आपको वहां से वो बाहर कर सकता है, उसको बोलते हैं पुत्र। पुत्र पुम नामक नरकीय प्लैनेट से आपको त्रायते आपको निकाल देता है, वो है पुत्र। पुत्र ही कर सकता है ये काम, इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे पहले सबको चाहिए बेटा। तो आत्मराम जो है बहुत दुखी था, तो वो जाके यू नो फ्रस्ट्रेट होकर जो है नदी के किनारे बैठ गया। वो सोचा अब मैं एक तो थका हुआ था, जंगल में दो तीन दिन से घूम रहा था, तो अब वो सोचा था कि मैं एक ही काम करता हूँ, इस नदी में मैं खुद जाता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मुझे नहीं जीना है। और तो जब ये सब चल रहा था तब वहाँ एक साधु आते हैं, और फिर ये साधु को जो है रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बेटा चाहिए, और साधु उसको काउंसलिंग करते हैं कि भाई तुम ऑलरेडी 50 साल के हो गए हो और अब तुम्हें जो है वनप्रस्थ ले लेना चाहिए, अब तुम बच्चा के लिए क्यों सोच रहे हो। इसलिए देखो हिंदी में होता है ना 51 52 52 के बाद सब जगह 111 लिखा रहता है, मतलब तुम वन में जाओ, अब तुम्हारा टाइम हो गया रिटायर। मतलब इसीलिए ऐसा उसका नाम ही ऐसा 51 52, मतलब जाओ वन में जाओ, अब तुम्हें घर में रहने का कुछ नहीं है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है वो सिंबल, हम अभी भी घर में बैठे रहते हैं। तो बोले तुम हो गए अभी 51, तुम अभी वन में जाओ। तो आत्माराम बोलते नहीं नहीं मुझे चाहिए। फिर वो साधु उसको पूरा भागवत सुनाता है, बोलते देखो अंग महाराज ने ऐसा किया था, वो प्रॉब्लम में पड़ गए, चित्रकेतु महाराज ने ऐसा किया था, हर्ष शोक का कहानी मैं तुमको बताता हूँ, तुम जो है डेस्टिनी के खिलाफ तुम मत जाओ, तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, नहीं है बस भूल जाओ, तुम भगवान का पूजा नहीं नहीं आपको देना ही पड़ेगा, आप तो बहुत दयाल है, साधु संत तो दयनीय होते हैं। फाइनली वो थक के बोला ठीक है ये लो तुम ये मैंगो लो, ये आम लो, तुम्हारी बीवी को खिलाओ, तुम्हें बेटा होगा। तो बहुत खुश हो गया, भागा भागा घर गया, अपनी बीवी को आम ला के दिया। बीवी सोचने लगी ये क्या नया प्रॉब्लम आ गया, मुझे नहीं बनना है माँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, वो कौन उस बच्चे को बड़ा करेगा, कौन इस मेरे मुझे अपना फिगर, मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। फिर उसकी जो बहन थी वो भी काफ़ी मेटेरियलिस्टिक थी, तो उसने बोला कि अरे तुम दीदी चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं अभी गर्भवती हूँ तो 9 महीने के बाद जब मेरा शिशु का जन्म होगा मैं आपको शिशु दे दूंगी। तो फिर वो बोले वो आइडिया तो अच्छा है लेकिन ये आम का क्या करो, बोलते आम का क्या करे, गौशाला में गाय को खिला दो, आपके पति को कैसे पता चलेगा। फिर इसने बोला नहीं नहीं लेकिन यू नो जब मैं गर्भवती होंगी मेरे पति को तो पता चलेगा ना कि मैं गर्भवती हूँ कि नहीं। तो उसकी बहन ने आइडिया दिया नहीं नहीं तुम्हारे पति को बोलो कि तुम इतनी खुश हो जो उसने तुमको आम ला के दिया, इसलिए तुम चाहती हो कि वो एक साल तीर्थ यात्रा में जाए और सब भगवान का जो है सारे अलग अलग ठाकुर जी का आशीर्वाद लेके आए, और मीनवाइल तुम भी जो है बहुत ऑस्टियर वे से जो है पूरा अपना 9 महीना निकालोगी तो एक दूसरे से मिलना नहीं है। तो उसने जाके आत्माराम को ऐसे ही बता दिया, बोला देखिए आत्मदेव, तो उसने जाके आत्मदेव को बोला कि देखिए आप इतना दिनों के बाद ऐसा हमें यज्ञ फल मिला है तो आप जाइए तीर्थ यात्रा करिए और आप जो है 9 महीने 10 महीने के बाद आप आना। तो ये भी बहुत खुश हो गया, वो तीर्थ यात्रा में चला गया। मीनवाइल ये जो मैंगो था वो तो गाय को खिला दिया और उसकी बहन का बेटा ने जन्म ले लिया, और जब तक आत्मदेव वापिस आया ये हाथ में बच्चा था और आत्मदेव बहुत खुश हो गया। अब ये गाय जिसने वो आम खा लिया था उसको अब एक मनुष्य का बच्चा पैदा हो गया, लेकिन गाय के गर्भ से पैदा हुआ था इसलिए उसके जो कान थे वो गाय जैसे थे, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया गोकर्ण। कर्ण मतलब कान, तो कान जो है गो माता जैसे गोकर्ण। अब सारे गांव वाले बोले देखो आत्माराम तुम्हारी आत्मदेव तुम्हारी किस्मत चमक गई, तुम्हारी बीवी ही नहीं तुम्हारे गौशाला में भी बच्चे पैदा होने लगे, देखो भगवान जब देते 56 फाड़ के तुम कितने ये हो। तो आत्मदेव को डाउट है कि गाय के पेट में से बच्चा कैसे निकला, तो उसने अपनी बीवी को पूछा कि कैसे हुआ ये। तो बीवी ने बोला नहीं मैंने आम खा लिया लेकिन आम के बाद जो छाल होती है गुठली होती है वो मैंने रख दिया था, वो शायद उसने खा लिया होगा, बाकी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर वो चलो बहुत खुश, बहुत बड़ा फेस्टिवल बना और सब ठीक से चला। धुंधुली और आत्मदेव के बेटे का नाम रखा धुंडुकारी। अब ये जो धुंडुकारी था वो तो उसकी बहन का बेटा था, और उसकी बहन तो मतलब भक्त नहीं थी, तो ये इसमें अच्छे लक्षण नहीं थे, तो ये सारे बुरा काम करना शुरू कर दिया। और ये जो गोकर्ण था वो तो साधु का आशीर्वाद था, तो वो तो बहुत अच्छा मतलब भागवत श्रवण कर रहा है और तीर्थ यात्रा में जा रहा है, वो अच्छा बन गया। अब कुछ समय के बाद ये धुंडुकारी इतना बदमाश हो गया कि उसने अपने पिताजी को जो है घर से निकाल दिया। तो इसके जो आत्मदेव बहुत ही दुखी होके गोकर्ण के पास गए, बोला कि तुम दोनों को मैंने प्यार से बड़ा किया, क्योंकि ये गौशाला में पैदा होता है इसको भी बड़ा किया, लेकिन सही मायने में तुम ही मेरे बेटे हो, लेकिन इसने तो मुझे घर से निकाल गया, अब मैं क्या करूँ, तुम मुझे कोई एडवाइस दो, तुम शास्त्र पढ़ते हो, तुम अच्छे गुण है तुम में। तो तब ये जो है वो अपने पिताजी को जो है समझाता है कि पिताजी आपने सबसे बड़ी गलती ये की कि जब साधु आपके सामने आए तब आपने साधु को भौतिक चीज मांग ली, वो भौतिक चीज नहीं मांगनी चाहिए थी। जब साधु संत हमको जब साधु संत का दर्शन होता है तब हमें आध्यात्मिक चीज मांगनी चाहिए, बेटा दे दो, वीजा दे दो, ऐसी चीजें नहीं मांगनी चाहिए। तो आप ऑलरेडी पहले गलती कर चुके हो, अब आप जो है इसके बारे में दुख ना करते हुए जो हो गया सो हो गया, आप वन की ओर चलिए, आप वन में जाइए और आप तपस्या करिए और भगवान को पाने की कोशिश करिए, आप इस धुंडुकारी के बारे में भूल जाइए। यहाँ पे ये गोकर्ण इतना सुंदर तरीके से अपने पिताजी को समझाता है कि जब हम किसी संत को किसी वैष्णव को मिलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। यूजुअली हम क्या कर देते हैं कि हमारे जो मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के, साधु जो हमें कृष्ण भक्ति दे सकता है उसको हम भौतिक विषय मांग लेते हैं। ये तो ऐसा हो गया ना कि किसी के पास 1000 का नोट है, अब तो 1000 का नोट इंडिया में नहीं है, 2000 का नोट है, और आप उसको बोलते कि भैया आप मेरे को 1 रुपये दे दो काफ़ी है, तो फुलिश है, वो तुमको 2000 दे सकता था लेकिन तुमने 1 रुपये मांगा। तो साधु और वैष्णव तो आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और तुमने ये जो है मेटेरियलिस्टिक थिंग मांग ली। इसलिए आप देखो भागवत में भी अगर आप कंपेयर करो प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज दोनों का जीवन, आप देखो कि प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज दोनों के गुरु एक ही थे, नारद मुनि, दोनों एक ही गुरु से शिक्षा लिए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग डेस्टिनेशन को प्राप्त किए हैं। ध्रुव महाराज जो है वो भौतिक जगत में, अभी भी आप ध्रुव तारा को आकाश में देख सकते हैं, उसका मतलब ये मेटीरियल रीम के अंदर ही है ध्रुव महाराज, क्रॉस करके नहीं गए। और प्रहलाद महाराज कहाँ गए, सीधा गोलोक धाम, सीधा वैकुंठ ऊपर गए। अब एक ही गुरु है, एक ही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन दोनों के डेस्टिनेशन अलग अलग है। एक अभी भी भौतिक जगत में ही है, वैकुंठ जैसा वैभव है ध्रुव लोक का, लेकिन है तो भौतिक जगत में, और एक जो है आध्यात्मिक जगत की ओर जा रहा है। तो क्यों ऐसा डिफरेंस आया, क्या गुरु ने कोई पार्शियलिटी की है, फिर क्यों दोनों को डिफरेंट डेस्टिनेशंस मिले? क्योंकि दोनों का गुरु को अप्रोच करने का तरीका डिफरेंट था। ध्रुव महाराज गए थे कि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूं मुझे क्या चाहिए, राइट? जब नारद मुनि मिले तब वो क्या बोला, मेरे को मेरे पिताजी से बड़ा राज्य चाहिए, आप मदद कर सकते हैं तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चला, यही बात बोला, आप बताओ मंत्र भगवान कहाँ मिल सकते हैं, क्या मंत्र बोलने से मिल सकते हैं, मैं निश्चय कर चुका हूँ मुझे ये चाहिए। वो गुरु के पास खाली स्लेट बन के नहीं गए थे, ऑलरेडी भरा हुआ था, निश्चय करा हुआ था कि मुझे ये ही चाहिए, लेकिन प्रहलाद महाराज खाली प्लेट, मेरे लिए जो अच्छा है बस वही, उनकी कोई मांग नहीं थी। तो कितना डिफरेंस है दोनों के डेस्टिनेशन में। अगर हम भी भक्ति करेंगे भौतिक इच्छाओं के साथ में, भौतिक इच्छा पूर्ण हो जाएगी लेकिन हम इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम यही रह जाएंगे, फिर से जन्म फिर से जन्म। लेकिन जब हम गुरु के सामने जाते हैं ओपन स्लेट, आप उसमें कुछ भी लिख दो, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है क्या करना है, मुझे भगवान के पास, जो भगवान के पास पहुंचा दो उसका विधि विधान क्या है, बस आप बताओ। तो कितना सुंदर बात। फिर गोकर्ण बोलते हैं आत्माराम को, भाई तुम जंगल के अंदर जाओ और तपस्या करो, आत्माराम जो है चला गया जंगल के अंदर। मीनवाइल उसने क्या किया, ये धुंडुकारी ने धुंधुली उसकी माँ को भी निकाल दिया घर से। अब उसकी माँ को जब घर से निकाल दिया तब वो बहुत दुखी हो गई कि मेरा बेटा ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसने आत्महत्या कर ली। जब उसने आत्महत्या कर ली और ये बात गोकर्ण को पता चली कि माता ने आत्महत्या कर ली, तो वो सीधा काशी चले गए श्राद्ध करने के लिए। यहाँ पे इसने क्या किया है, धुंडुकारी ने अपने घर में 5 वेश्याओं को रखा, और ये माँ बाप को तो घर से निकाल चुका था और सब समय गलत कामों में, पीना सब समय गलत कामों में लग गया। अब यहाँ पे मीनवाइल क्या हुआ, ये जो 5 वेश्या थी उन्होंने सोचा कि ये हमें रोज थोड़ा थोड़ा पैसा देगा, इससे क्या होगा, एक साथ में इसको मार देते हैं और जितना उसका पैसा है हम 5ों में शेयर कर लेते। तो एक दिन रात को लोग ने क्या किया, कपड़ा लेके उसका मुंह हाथ बांधा, उसको मार डाला और वहां घर के अंदर ही माटी जो है खोद के उसको वहां पे दफना दिया। अब जब ये गोकर्ण वापिस आया काशी से, तब सुना कि उसका भाई भी अब नहीं रहा, तो उसको बहुत दुख हुआ। तो वो जब वहाँ पे अपना भाई भी जब गुजर गया है, तो जब घर के आंगन में वो चल रहा है, तब इसका आत्मा, ये जो धुंडुकारी है, उसकी आत्मा ने बोला कि भाई मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा अभी तक मोक्ष नहीं हुआ है और मैं इधर ही घूम रहा हूँ, तुम मेरी सहायता करो। तब गोकर्ण बोला, लेकिन मैं तो श्राद्ध वगैरह करके आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो वो फिर जाता है काशी, श्राद्ध करके आता है, आने के बाद देखता है फिर अभी भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। फिर धुंडुकारी बोलता है कि तुम किसी को पूछो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वो जाके कुछ साधुओं को पूछता है कि आप बताइए क्या कर सकते हैं। तो कुछ साधु ने बोला तुम सूर्य पूजा करो। तो वो सूर्य पूजा करता है, तो 7 दिन तक लगातार दिन रात सूर्य की पूजा करता है। और फिर सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं मेरी पूजा करने से भी नहीं होगा, अगर तुम्हें इसका मोक्ष चाहिए तो मैं तुमको विधि विधान बताता हूँ, ये 7 दिन का प्रोसेस है, तुम इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पक्का तुम्हारा जो भाई है वो भगवत धाम जाएगा। और फिर जो है गोकर्ण को ये प्रोसेस सूर्य देव ने बताया कि तुम 7 दिन श्रीमद् भागवतम का पारायण करो, मतलब भागवतम का जो है अध्ययन करो। तो सुबह दोपहर शाम जो है ये लोग भागवत कथा शुरू किए। तो फिर क्या किया इसने, गोकर्ण ने सारे गांव वालों को बुलाया और सब मिलके भागवत श्रवण करने लगे। अब भागवत श्रवण ये धुंडुकारी की आत्मा को सुनना है, लेकिन सुनने के लिए तो सूक्ष्म जो शरीर होता है, जो आत्मा होती है, उसके पास कान आँख कुछ तो रहता नहीं, उनको किसी के शरीर में प्रवेश करना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक बैम्बो की स्टिक रख देते हैं और धुंडुकारी को बोलते हैं तुम इसके अंदर प्रवेश करो, और वो जो स्टिक है उसको 7 जगह जो है गीठा बांध देते हैं। तो जैसे जैसे पहले दिन की कथा खत्म होती है, वो जो पहली गीठ होती है वो अपने आप से टूट जाती है, एकदम आवाज़ से टूटती है। फिर सेकेंड डे की जब कथा खत्म होती है तो सेकेंड गीठ जो है वो टूट जाती है। तीसरा दिन तीसरी गांठ टूट जाती है। ऐसे 7वें दिन जब 7वीं गांठ टूटती है, तब देखते हैं कि इसकी जो आत्मा है धुंडुकारी की, वो एकदम नारायण स्वरूप में 4 हाथों के साथ में भगवान के स्वरूप में एकदम वैकुंठ से उसके लिए प्लेन आता है और वो चला जाता है। लेकिन गोकर्ण और सारे गाँव वाले आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम भी भागवत पढ़े हैं, हम भी सुने हैं, ये चला गया, ये तो इतने पाप किया था और हम क्यों नहीं जा पाए। उन्हें बहुत बड़ा ये होता है, अफसोस होता है। तो फिर उसको जो है आकाशवाणी उनको समझाते हैं कि धुंडुकारी ने जिस तरह से भागवत सुना था, बहुत ही सीरियसली, बहुत ही सिंसियरली, क्योंकि उसके लिए वो लाइफ एंड डेथ का मामला था कि या तो यहाँ जीवन भर रहना है या तो इसकी एक एक शब्द को सुन के मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन आप लोग बहुत रिलैक्स वे से सुना, आप लोग को कोई जल्दी नहीं था कहीं भी जाने के लिए, शांति से आप लोगों ने सुना। नहीं, एक जब भी ये जो एकादशी का वगैरह महात्म्य पढ़ते हैं या कोई, सारे को ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिखा रहता है कि एक साथ में सारे पाप धुल जाएंगे, साथ ही साथ मोक्ष मिल जाए, हमको कभी कुछ होता ही नहीं, इतने एकादशी किए, यही प्रॉब्लम है। उतना दृढ़ विश्वास, उतना सिंसियरिटी, अगर सिंसियरिटी से और विश्वास से करे तो एक्चुअली 16 राउंड्स भी जरूरत नहीं, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से ही भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन हमारा इसलिए मैं नहीं बोली 16 राउंड बंद करो, लेकिन एक्चुअली मतलब एक नाम भी अगर आप सिंसियरली करो तो आप भगवत धाम वापस जा सकते, लेकिन हम सिंसियरली नहीं करते। फिर गोकर्ण को बताया गया कि भाई तुम जो है ध्यान से, तुमको एकदम वो जो डेस्परेशन था गोकर्ण का, वो डेस्परेशन नहीं था। मैं बहुत बार भक्तों को एग्जाम्पल देते रहती हूँ कि डिवोटीज का जो है वो इतना डेस्परेशन नहीं है जितना भौतिक जगत के जो लोग हैं उनका डेस्परेशन ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग क्या थोड़ा सा डिस्पैशनेट हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं, कि हमें पता है कि भगवत धाम जो है वो एटर्नल है, आत्मा एटर्नल है, मेरी मौत नहीं होती है, धाम भी कहीं हिलने वाला नहीं है, फिर जल्दी क्या है, जाएंगे, हम भी शाश्वत है, धाम भी शाश्वत है, कभी ना कभी जाएंगे, हम लोग रिलैक्स हो जाता है, कोई हमें टेंशन नहीं होता है। और मेटेरियल डिजायर्स ज़्यादातर होते नहीं, तो कोई चीज़ मोटिवेशन नहीं होता है कुछ भी करने का। जैसे भौतिक जगत के जो लोग होते हैं वो इतना पाप करते हैं, और फिर जब वो आरती कीर्तन में हरे कृष्ण करते इतना भाव से कि अरे मैंने इतना पाप किया है, तो इतना भाव ज़्यादा आ जाता है कि मेरे पाप सब धुलने चाहिए, और डिवोटी थोड़े से रिलैक्स हो जाता है। बिकॉज यू नो, सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू डू, बट आई एम सेइंग दैट वी बिकम सो मच रिलैक्स बिकॉज वी थिंक आई एम फाइन, यू नो आई एम नॉट डूइंग एनी सिनफुल एक्टिविटी, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे पहुँचूंगा। लेकिन ये जो हंगर बोलते ना, जो भूख कि मुझे जानना ही है, मुझे समझना ही है, मुझे जब करना ही है, मुझे इस जन्म में ही जाना है, मुझे कुछ दिन पहले ही मैं प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक जगह परपोट में लिखे है कि फिनिश योर जॉब इन दिस लाइफ ओनली, डोंट वेट फॉर नेक्स्ट लाइफ, करूंगा करेंगे नहीं, अभी अभी मुझे जाना है भगवत धाम, अभी का अभी मुझे यहाँ से मेटेरियल वर्ल्ड से मुझे निकलना है। तो ये लोग सिंसियर थे, और सिंसियरिटी से देखो भगवत गीता भी अर्जुन ने भी सुना है, धृतराष्ट्र ने भी सुना है, संजय ने बोला है, लेकिन धृतराष्ट्र का क्या हुआ, अर्जुन का क्या हुआ? लेकिन अर्जुन जो डेस्परेशन से सुना है कि मुझे ये सुनने के बाद डिसीजन लेना है कि मैं वॉर करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन धृतराष्ट्र तो 10वें दिन पे सुना था जब ऑलरेडी वॉर शुरू हो गया था, उसका तो यही इंटरेस्ट था कि मेरे बच्चों में से कौन मर गया, कौन बाकी रह गया, कौन जिंदा है, उसका और कोई इंटरेस्ट नहीं था। द सिंसियरिटी, यू नो व्हाट लेवल पे हम सुन रहे हैं भागवत, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनने वाले भी जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग सुनते हैं बैठे हैं लेकिन फिर भी नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ दिखता है कि वो लोग सुन रहे हैं। जैसे आप देखो, अगर बाथरूम में आपको पानी भरना है बकेट में, तो अगर सपोज पानी फुल फ्लो में आ रहा है लेकिन अगर आपने बकेट को उल्टा करके रख दिया है तो पानी तो फुल फ्लो में आ रहा है लेकिन बकेट में पानी जाएगा नहीं। अच्छा सपोज आप बकेट आपने सीधा करके रखा है लेकिन बकेट के अंदर में होल है तो भी पानी लीक हो जाएगा। अच्छा बकेट में होल नहीं है, बकेट सीधा ही रखा हुआ है लेकिन बकेट में अगर गंदा पानी पहले से भरा हुआ है फिर भी आप पानी नहीं भर सकते हैं। तो उसी तरह से ये जो भागवत सुनने वाले भी ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ अपने ब्रेन की बकेट उल्टा करके बैठे हुए हैं क्लास में, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो ऊपर से ही चला जाता है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। मेंटली बात कुछ और चल रही है, अभी यू नो अभी जाना है, माता जी कब बंद करेगी, रात में छोले भिजाए कि नहीं भिजाए, कल सब्जी बनाने के लिए दही फ्रिज में रखा था नहीं रखा, कितने सारे विचार चले जाते हैं, मतलब बकेट अभी उल्टा है, मैं जो बोलती हूँ वो वहाँ से ऊपर से चला जा रहा। कुछ ने बकेट सीधा रखा है, मेंटली भी प्रेजेंट है, फिजिकली भी प्रेजेंट है, लेकिन होल है। होल होने में क्या होता है कि यहाँ से सुनते हैं यहाँ से बाहर, वो क्रॉस वेंटिलेशन विंडो जैसे वो बाहर जगाते हैं। मैं अक्सर प्रवचन में बोलती हूँ कि प्रवचन सुनने वाले जो है वो तीन चार टाइप के होते हैं। कुछ होते हैं वो हमेशा अपनी बुक में बिजी रहते हैं, आप कुछ भी बोलो आपकी तरफ देखते नहीं, उनका मुंह नीचे ही रहता है, वैसे लिखते हैं जैसे पीएचडी की थीसिस वैसे लिखते रहेंगे, ये पॉइंट बता, अच्छा पूरा बुक सेक्शन में चला जाता है। कुछ लोग थोड़े से यू नो बुक में नहीं डालते लेकिन मेमोरी सेक्शन में, ये पॉइंट अच्छा है, हाँ ये क्लास में से ये पॉइंट अच्छा लगा, वो मेमोरी सेक्शन में चला जाता है। कुछ बुक सेक्शन, कुछ मेमोरी सेक्शन, कुछ क्रॉस वेंटिलेशन। वेरी रेयरली कुछ चीज जो है वो हमारे संकल्प सेक्शन में जाते हैं। संकल्प सेक्शन मतलब हमने सुना और अब हमारे जीवन में उसको हम आचरण करेंगे, आज का आज हम आचरण करेंगे। और जो चीज़ संकल्प सेक्शन में जाती है वो हमारे जीवन में चेंज लाना शुरू करती है। तो ये कभी कभी बकेट सीधा होने के बावजूद भी अगर उसमें होल है तो सारा गया जो भी सुना हुआ है। कभी कभी होल नहीं है लेकिन ऑलरेडी भरा हुआ है गंदे विचारों से, हाँ गंदे विचारों से भरा हुआ है, भौतिक विषयों से भरा हुआ है, बहुत सारी आशा और इच्छाओं से भरा हुआ है। उसके ऊपर में आप कितना भी तुम भगवत गीता भागवत का ज्ञान डालो कुछ नहीं होगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक भिखारी भी जब भीख मांगने आता है, अगर उसके प्लेट में कल की बासी पुरानी चपाती या सब्जी होगी, अगर आप उसके ऊपर में खीर डालोगे तो वो स्वाद नहीं ले पाएगा, उसको गंदा स्मेल ही आएगा। पहले तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसका पूरा कल का कचरा निकाल के प्लेट धो के आएगा तो फिर उसको समझ में आएगा इस्कॉन का खीर कितना टेस्टी होता है ना। तो हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारे विचार है, पहले उसको निकालना है, एकदम एम्प्टी प्लेट हो जाना है गुरु के सामने, एकदम सरेंडर, फिर जो भी बोलेंगे एकदम टच हो जाएगा कि जगह खाली कर दी है। तो बहुत रेयर ऐसा पर्सन होता है जो बकेट में गंदा पानी भी नहीं है, लीक भी नहीं है और सीधी है। तो वैसा जो भागवत सुनता है हर एक शब्द, हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम क्लास सुनते सुनते भी जजमेंटल हो जाते हैं, मतलब क्लास मैं जीवन में क्या अपनाऊँ उससे ज़्यादा आज का क्लास कैसा था, स्पीकर कैसा है, हाँ अच्छा था, जोक्स ठीक थे, ये पॉइंट और ऐड। स्पेशली जिसका ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा जो भागवत पढ़ लेता है वो तो बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाता कोई भी भागवतम क्लास, क्योंकि कोई भी भागवत क्लास में उसको अपना ओपिनियन पता चलता है, इसके साथ ये कहानी बोला होता तो ज़्यादा और भी अच्छा लगता था, ये श्लोक कोट किया होता तो और भी अच्छा लगता, जिंदगी बर्बाद हो जाती, मतलब और एंजॉय नहीं कर पाते भागवतम क्लास के। हर पल लगता है कि ये इसके तो ये श्लोक भी तो बोल सकते थे, ये तो और भी बढ़िया होता था ना, राइट। तो कुछ कुछ लोगों को स्पीकर के साथ बहुत अटैचमेंट है, ये स्पीकर है तो सुनना चाहते, वो स्पीकर है तो नहीं सुनना चाहते, ये स्पीकर है तो बहुत जोक्स बोलेंगे तो मजा आएगा। द होल पॉइंट इज मजा आएगा, हमें मजा करना है, मजा करने के लिए नहीं है भागवतम का, मुझे एंजॉय करना है, नाइस एकदम कुछ स्टोरीज बोलेंगे, कुछ जोक्स बोलेंगे, हम हंसेंगे। सात्विक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है भागवतम क्लास। कुछ लोग सिनेमा में जाके राजसिक एंटरटेनमेंट करते हैं, हम लोग भागवतम क्लास में बैठ के सात्विक एंटरटेनमेंट करते हैं कि, और फिर मन में क्या है, गिल्टी कॉन्शियसनेस भी नहीं कि मैंने भागवत सुना, लेकिन तुम क्या सुना, अंदर में कुछ नहीं गया, अच्छा लगा, जोक्स था, स्टोरी था, टाइम पास हो गया, एक घंटा अच्छा लगा, चलो महाप्रसाद है, गोविंद है, बस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, श्रवण करने का विधान भी जो है बहुत परफेक्ट होना चाहिए, एकदम सिंसियरिटी से हर एक शब्द जब सुनते हैं ऐसे सोचना चाहिए कि मुझसे बात कर रहे, बस यहाँ कौन बैठा है मुझे फर्क, मुझसे बोल रहे, मेरे को बोल रहे, ये मुझे मेरे जीवन में अपनाना है। और इमीडिएटली जो है क्लास के टाइम पे लिखते हुए बैठना नहीं चाहिए, घर जाके फिर उसका मनन करना चाहिए, जिस तरह से वो गाय पहले पूरा घास खा लेती है और फिर धीरे धीरे करके उसको बाहर निकाल के उसको चबाती, बस वैसे ही जो आपने ग्रहण कर लिया, फिर उसको जो है आप उसको बुक में फिर पुनः लिखो कि हाँ ये पॉइंट अच्छा था, मैं ऐसे अप्लाई करना चाहता हूँ जीवन में। तो श्रवण भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरह का हम श्रवण करते हैं, अगर हम सिंसियरली श्रवण करते हैं तो पक्का जो भी भागवत पढ़ता है वो पक्का भागवत धाम जाएगा, और कुछ भी उसको करने की जरूरत नहीं है। ये जो 64 लिम्स ऑफ भक्ति रूप गोस्वामी ने दी है उसमें से कोई एक अंग भी अगर हम सही तरीके से कर सकते हैं ना, बाकी के 63 भूल जाओ, कोई भी एक सिंसियरली हम भगवत धाम जा सकते हैं, बस कोई भी एक सिंसियरली करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी इतनी मेहनत, रात रात बैठ के इतना ट्रांसलेट करके हम लोग के लिए जब ये बुक्स दिए हुए हैं तो हमें उनको पढ़ना चाहिए। अदर डे वैसे श्री का प्रभु ने बहुत अच्छा से बताया, उन्होंने बोला कि अगर कोई डिवोटी रोज अगर भागवत के 9 पेजेस पढ़ता है तो 5 साल में पूरी भागवत खत्म हो जाएगी, एवरीडे सिर्फ 9 पेजेस पढ़ना है। और अगर कोई एवरीडे 41 पेजेस पढ़ता है तो 1 साल में पूरी भागवत खत्म हो जाएगी, 1 ईयर में 41 पेजेस। तो मैं तो सोचती हूँ कि न्यू ईयर का यही रेजोल्यूशन होना चाहिए, एक नियम कि ठीक है अगर आप सोचते हैं 4 पेज भी बहुत है तो कोई नहीं, एक पेज या पर्टिकुलर एक श्लोका विथ ट्रांसलेशन एंड अनुवाद रोज रात को सोने से पहले मैं पढ़ूंगा, अपने आप से ये रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, नया साल शुरू हो रहा है रोज पढ़ूंगा। अब इमेजिन करिए 41 पेजेस रोज पढ़ने से भी 1 साल लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए, 9 पेजेस पढ़ने से 5 साल। और प्रभुपाद जी ने कितना टाइम में खत्म किया भागवतम, कितना मेहनत किया होगा उन्होंने, जिसको पढ़ने में भी हमें साल साल लग जाएंगे, उन्होंने एक भागवत नहीं लिखा ना, उन्होंने चैतन्य चैतामृत कितने सारी किताबें उन्होंने ट्रांसलेट की, तो कितना मेहनत किया होगा उन्होंने। जब हमें ये ट्रेजर वो दे के गए हैं तो हमें जरूर से पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जितने भी आज क्लास में बैठे हैं मैं अनुरोध करती हूँ कि आज एक नियम बना दो कि भाई मैं रोज, जो लोग रोज वांछन ऑलरेडी कर रहे हैं बहुत अच्छा, जो लोग रेगुलरली नहीं, देखो पौधे को अगर ठीक से बढ़ाना है तो रोज पानी देना है थोड़ा थोड़ा, एक दिन पूरा बकेट डाल दोगे फिर 15 दिन उसको कुछ नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा। हमारी भक्ति का ये जो पौधा है, ये बीज किसने दिया है, गुरु ने दिया है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा ते पाए भक्ति लता बीज। गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज तो डाल दिया, अब उसको सींचना है, और सींचना है मतलब रोज थोड़ा थोड़ा सा भागवत श्रवण करना है, मंत्र जप करना है। तो मैं अनुरोध करूंगी जितने भी आज यहाँ बैठे, एक मन में संकल्प कर, एक श्लोक पढ़ूंगा या एक पेज, श्लोक भी पूरा ना कंप्लीट कर पाओ तो वन सिंगल पेज, अगर पूरा दिन भी बिजी रहते हो रात को सोने से पहले जस्ट बिफोर यू गो एक पूरा पेज पढ़ के बस बंद करके सो जाओ। एंड दिस वे भागवत इज वेरी वेरी पावरफुल, जिसके जीवन में भागवत का प्रवेश हो गया उसके जीवन में सब कुछ मंगल, भगवान खुद है ना भागवत में, भगवान कृष्ण है, सब कुछ मंगल हो जाएगा, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, सब कुछ अच्छा से समझ में आएगा, भगवान का एक प्रोटेक्शन रहेगा, भगवान के ऊपर प्रीति बढ़ेगी, ये जो वांछा है डिजायर सारे कम हो जाएंगे, भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ेगी, भौतिक विषयों पे आसक्ति कम हो जाएगी, ये सब भागवत मेडिसिन का साइड इफेक्ट है, इसलिए भागवत पढ़ना जरूरी है। मैं आज यही खत्म करूंगी, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, 8 बज गया। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलिए। हो सकता है ज्यादा सांस ले ले रहे आप, इसलिए फिर कभी कभी प्राणायाम किया करो उसको बैलेंस किया करो ना, सुबह एक घंटा प्राणायाम करके धीरे धीरे सांस ले लो, सो दैट बैलेंस हो जाए। और यस, हाँ वो दीपक प्रभु ने पहले हाथ उठाया, बोलिए। करेक्ट, बहुत अच्छा। दीपक प्रभु पूछ रहे हैं कि आपने बोला कि जब कोई साधु या वैष्णव को मिलते हैं तो भौतिक चीजें नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो भौतिक चीजें हमारे स्पिरिचुअल लाइफ से काफी कनेक्टेड है, क्योंकि अगर वो भौतिक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ये स्पिरिचुअल प्रॉब्लम आगे बढ़, मतलब और भी प्रॉब्लम हो जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ में कंटिन्यू करना। सी, कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस भौतिक प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो उसका सॉल्यूशन मिल जाने से दूसरा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, फिर उसका सॉल्यूशन मिलेगा तब दूसरा कोई प्रॉब्लम, क्योंकि ये तो दुखालयम अशाश्वतम है ये दुनिया, तो कंटिन्यूस प्रॉब्लम तो आते रहेंगे। गारंटी नहीं है कि ये प्रॉब्लम मैंने किसी वैष्णव से रिक्वेस्ट किया, उसकी ब्लेसिंग मिल गई, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, अब और कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में आने वाला नहीं, प्रॉब्लम तो आता ही रहेगा। इसलिए हम कभी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो ये नहीं मांगते, हम जब भी किसी वैष्णव को मिलते हैं हम मांगते हैं कि हमें आशीर्वाद करो हम अच्छा भक्त बने, आशीर्वाद करो कि मैं अच्छा जप कर पाऊँ, आशीर्वाद करो कि मैं अपने गुरु की अच्छे से सेवा कर पाऊँ। अब तुमने जो मांगा है उसमें इसका भी सोल्यूशन मिल गया ना, कि तुमको अगर अच्छा से सेवा करना है, जप करना, तुम्हारे मेटेरियल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा तभी तो तुम कर पाओगे, तो बस हो गया, तुमने मांग लिया, तुमको जो मांगना था तुमने मांग लिया। पर स्पेसिफिकली वो क्यों मांगे, क्योंकि उसके बाद और एक प्रॉब्लम आएगा, फिर किसको मांगेंगे, पूरा पैकेज ले लो, छोटा छोटा नहीं, पूरा पैकेज। तो एक साथ में बोलो मुझे अच्छे से भक्ति करना है, मुझे गुरु सेवा करनी है, मैं अच्छा वैष्णव बनना चाहता हूँ, बस मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपने आप से सारे प्रॉब्लम। वैष्णव बहुत पावरफुल होते हैं। एक बार एक पर्टिकुलर स्टोरी मुझे याद आई, कैसे तुलसीदास जी एक दिन कुछ अपने जप में बिजी थे, जप करने के बाद में जो उनके दिनाचार्य होती है वो स्नान करने गए, स्नान करके जब बाहर आ रहे थे तो एक लेडी जो है भागी भागी उनका उनको प्रणाम की, चरण छुई है, तो उन्होंने इमीडिएटली बोल दिया सौभाग्यवती भव। अब इमीडिएटली जो उन्होंने देखा भी नहीं कौन प्रणाम कर रहे हो, सब लोग प्रणाम करते रहते हैं, वो अपने ही राम राम करते करते जा रहे हैं, तो दूसरे लोगों ने बोला अरे आपने उसको सौभाग्यवती बोल दिया, अभी अभी उसके पति जो है गुजर गए, वो आपको यही बिचारी बोलने के लिए आ रही थी कि देखिए मेरे पति गुजर गए, तो बोला अरे अरे मतलब बोल दिया ना उन्होंने मुंह से बोल दिया, तो फिर वो बोला अच्छा ऐसी बात है। फिर तुलसीदास जी गए शव को देखने के लिए, देखा वो जिंदा हो गया है। अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एक प्योर डिवोटी के मुंह से जो बात निकली है वो गलत नहीं होनी चाहिए, तो क्या किया विधाता ने उसका भाग्य बदल दिया, उसको फिर से जीवित कर दिया। सो इमेजिन हाउ पावरफुल द वैष्णव डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर। तो फिर उसको एक एक छोटा छोटा प्रॉब्लम क्यों बोले, जब इतने पावरफुल लोग हैं उनको इतना ही बोलो बस मैं अच्छा से भक्ति करूं, बाकी वो आपको जो आशीर्वाद देगा उसमें सारे मेटलिस्टिक प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। आपका क्या प्रश्न था? सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि श्रीमद् भागवतम हम जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम देते हैं, वो लोग नहीं पढ़ेंगे शायद घर में। तो ऐसा है, श्रीमद् भागवतम मतलब पूरा कृष्ण भगवान खुद वहाँ पे है, पूरे देवता सब उधर है, तो अगर कोई नहीं भी पढ़ता है तो उसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा, क्योंकि घर में भगवान के साथ सवास कर रहे हैं। लेकिन जो उसकी महिमा समझने के बाद, जैसे हम जैसे भक्त लोग जो इतने सालों से इस्कॉन में है रह रहे, हमें पता है कि उसमें जो है कृष्ण है, उसके बाद भी अगर हम उसको नहीं पढ़ते हैं तो ये अपराध है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पाप है, पाप और अपराध में डिफरेंस है, तो ये अपराध है कि जानने समझने के बाद भी हम जो है, ये तो रोज मॉर्निंग मंगला आरती के बाद भी बोलते हैं ना 10 नाम अपराध के, जानने समझने के बाद भी जो है भौतिक वांछाओं से हम जो है छूट नहीं रहे हैं, हम भागवत पढ़ नहीं रहे हैं, तो बस यही है, यही आप डराने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ेंगे कैसे भागवत। जब तक डरेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे कि नहीं, अरे माता जी ने बोला कि अपराध हो जाएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। भागवत घर में रखना बहुत सौभाग्य, वह भागवत किस कितना पुण्य किया होता है तब घर में भागवत जी होते हैं। और कोई प्रश्न? हाँ, ये बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जो तोते के रूप में भागवत सुन रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, शिवजी उन्हें मारना क्यों चाह रहे थे या उनके पीछे भाग क्यों रहे थे। कुछ कुछ आचार्य ने बोला है कि मारने की इच्छा से नहीं, लेकिन शिव जी का ये चिंता था कि कहीं कोई गलत पर्सन के कान में तो नहीं लग गई ये भागवत, क्योंकि अगर वो किसी और को सुनाएगा, किसी और को, तो सारे अमर हो जाते। जिसकी पात्रता है, योग्यता है, उसे सुना जाए। और कभी कभी क्या होता था उन दिनों में, जो राक्षस वगैरह भी क्या है, कभी कभी वेश बदल बदल के आ जाते हैं ना, तो ही जस्ट वॉन्टेड टू नो कि भाई कौन है ये। उनको थोड़ी पता था कि राधा रानी का तोता है, वो सोच रहे कि कौन है, कोई वेश बदल के आके सुन के चला गया क्या भागवत का ज्ञान, बस यही वो जानना चाह रहे थे। बाकी शिवजी तो बहुत दयालु, वो किसी को, शिवजी का नाम क्या है और एक पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मतलब जो पशुओं के भी नाथ है, मास्टर है, जो पशुओं की रक्षा करते हैं। नेपाल में बहुत फेमस एक पशुपतिनाथ टेम्पल है, और उस पशुपतिनाथ टेम्पल के सामने ही बाहर में ही चारों ओर पशु को स्लॉटर करते हैं। हाँ, स्लॉटर करते हैं वहाँ पे। मैं तो एकदम शौक हुई जब मैं नेपाल गई, मैं शौक हो गई, मेरे एक पशुपतिनाथ अंदर बैठे और यहाँ पशुओं का ये, और मेनली वहाँ पे ज़्यादा करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान जो है वो पशुओं की रक्षा करते हैं, इसीलिए वो पशुपतिनाथ है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।